जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत का मुताला कर रहे हैं, तो अभी हमारा प्री इस्लामिक ईरा जो है, यानी माकबल इस्लाम दौर जिसे कहते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे जो शजरे नसब है रसूल सल्लम का, और उसमें फिर कुरैश के जो आप कह लें ट्राइब्स हैं, कबाइल हैं, फिर उनमें जो कबाइली तकसीम है, हरायरकी है, फिर उनके जो मसाइल हैं, माशरत है, ठीक है, या उनके यहाँ जो एक निज़ाम सियासत है, ठीक है, तो उस निज़ाम माशरत और सियासत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कबाइली एक माशरे के तनासुर में, और ख़ास तौर पे फिर उस कौम के जो खसाइल और आदात हैं वो भी हमारे सामने आ रही हैं। क्योंकि एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने उसी कौम को क्यों चुना आखिरी नबुवत के लिए, हालांकि नबुवत तो जारी थी यहूद के अंदर और वो तमन्ना भी कर रहे थे। तो बहरहाल कौम के अंदर कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी वजह से उनका इंतखाब किया गया। फिर उस खित्ते का क्यों इंतखाब किया गया, तो उस हवाले से भी हमने देखा कि वो खित्ता जो मुतमद्दिन दुनिया थी उस वक़्त की, उसका तकरीबन मरकज़ बनता था। अच्छा, एक दो तस्सियात हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक तो हमारे एक लिसनर थे, वो नीचे उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि हाफिज़ साहब अमेरिका जो है वो वास्को डे गामा ने नहीं, कोलंबस ने दरियाफ्त किया। वो कोई दरमियान में बात आई अमेरिका के हवाले से, तो वो बात ठीक थी, ज़ाहरी बात है, वो तो कोलंबस ने दरियाफ्त किया था, वास्को डे गामा ने तो हिंदुस्तान का रास्ता तलाश किया था, तो कोलंबस ने अमेरिका का रास्ता तलाश किया था। तो बहरहाल उसकी तस्सीह कर लें, तो बहरहाल छोटी मोटी कुछ गलतियां हो जाती हैं, बाज़ औक़ात बंदा उनकी तस्सीह कर लेता है और बाज़ औक़ात तस्सीह करना भी मुमकिन नहीं होता। अब कल मैंने एक डेढ़ घंटे का जो है ना वो एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, यहाँ स्टूडियो में जैसे रिकॉर्ड करके उसको चैनल पर चढ़ा देता हूँ, मौलाना सनाउल्ला जो है वो अमृतसरी, जब वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, फिर उसकी एडिटिंग कर ली, जब चढ़ा दिया उसको, अपलोड कर दिया, वो ज़ाहरी बात है काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। तो ऐसे मुझे ख्याल आया कि अमृतसरी जो है ये मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो वो जब मैंने उसको देखा, क्योंकि उमूमन मेरी आदत है कि उर्दू के अल्फाज जो है वो देख लिया करता हूँ, तो वो मिस हो गया ना, चूँकि सारी अमृतसर कहते हैं तो अब ठीक है अमृतसर ही होगा, लेकिन एक ऐसी जहन में आ गया कि देख लेना चाहिए। तो वो मैंने देखा तो वो अमृतसर नहीं था, अमृतसर था, रा के जो है ना वो कसरा है, अमृतसर, तो अंग्रेज़ी में भी उसको अमृतसर कहते हैं। असल में हमारी उर्दू भी चूँकि ये अल्फाज जो है ना पुख्ता हो गए बचपन में टीचर से सुने, और ख़ास तौर पर हमारे जो असातज़ा हैं, बहरहाल हैं तो हमारे असातज़ा ही उर्दू के, उनका उस तरह का तो कैलिबर नहीं होता, तो वो चीज़ें ना पुख्ता हो जाती हैं। बाद अवकात आपको पता भी होता है कि इस लफ्ज़ का ये तलफ़ुज है, लेकिन आपको बोलना मुश्किल लग रहा होता है, मतलब वो सेट हो गया ना उसके, आप कह लें, या बाद अवकात आपको लगता है कि यार इसको मैं सही बोलूँगा तो अगला परेशान हो जाएगा, ठीक है। अब हम हिरन हिरन कहते रहते हैं, हालाँकि डिक्शनरी में देखें तो वो हरन लफ्ज़ है, हरन, ठीक है। इसी तरह हम किला किला कहते रहते हैं, असल में वो डिक्शनरी में देखेंगे तो वो कला है। खैर, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, अब वो पुख्ता हो गई हैं, तो उनको ठीक तरह से पढ़ने से हो सकता है कि यदि अगले को समझ ना आए बात, या वो समझे कि ये गलत पढ़ रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारी उर्दू में काफ़ी कुछ बेहतरी की गुंजाइश है, तो और अब अगली नस्ल में हमें उर्दू के अच्छे टीचर्स असाज़ा देने चाहिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी, तलफ़ जो है ना बहुत ज़रूरी है, ठीक होना चाहिए। और उसमें फिर ये भी है, कुछ लोग भी ज़रा गुलूफ करते हैं नीचे कमेंट्स में, हाफिज़ साहब ये लफ्ज़ ये नहीं, फलां इस तरह से है अब वो ये नहीं देखते कि यार दो घंटे का लेक्चर है, अब दो घंटे के लेक्चर में हाफिज़ साहब ने कोई 2000 जुमले बोले होंगे, ठीक है, उन 2000 जुमलों में अगर कोई दो जुमलों में चार गलतियाँ निकल आई हैं तो उसकी रेशो को 0.11 में भी जाके बनती होगी, तो लेकिन लोगों ने उसी को हाईलाइट करना होता है और उसी से एवेल्यूएट करना होता है कि आपको उर्दू आती है कि नहीं आती। और हालांकि वो जो तस्सीह कर रहा होता है बाज़ औक़ात वो ख़ुद भी गलत तस्सीह कर रहा होता है। खैर, बहरहाल ये तो बात दरमियान में आ गई। हाँ, हम बनू कुसई तक पहुँचे थे। रसूलुल्लाह सल्लम की एक हदीस हमने देखी थी कि जिसमें आप सल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने जो है वो बनू इस्माइल में से जो है वो कनाना को चुन लिया, कनाना में से जो है वो कुरैश को चुन लिया। कुरैश के बारे में मुझे सही बात यही मालूम होती है कि वो बनू फेहर हैं, अगरचे दो आ रहा है उसके बारे में तो, लेकिन ज़्यादा बेहतरी महसूस होता है। और फिर कुरैश में से बनू कुसई को चुन लिया। तो बनू कुसई एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस शजरे के अंदर, ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो हमने ये बात कही थी कि कुसई का ये मुकाम और मर्तबा है कि इन्होंने बनू खुज़ा से ये बैतुल्लाह लिया था, ठीक है। तो बनू इस्माइल से तो उनके जो ससुराली रिश्तेदार थे ना बनू जुरहम, उन्होंने जो है वो बैतुल्लाह की तौलियत ले ली थी, तो उनके पास सदियों रहा। उसके बाद बनू खुज़ा ने जो है वो बनू जुरहम से क्या किया, वो बैतुल्लाह की तौलियत ले ली थी। तो बनू खुज़ा ने बनू बकर के साथ मिल के ली ना, ठीक है, बनू बकर जो अब्दे मनात की नस्ल में से है। फिर कुसई ने आके क्या काम किया कि वो बैतुल्लाह की तौलियत वापस लिए। अच्छा, ये कुसई का एक कारनामा तो ये है, तो इस वजह से जो है वो इनको ये मुकाम और मर्तबा मिला। तो एक हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि बनू खुज़ा के जो सरदार थे एक हुलैल, उनकी बेटी से कुसई का निकाह हो गया था, ठीक है, तो ये दामाद भी बन गए बनू खुज़ा के। तो जब सरदार फोत हुए तो फोत होने से पहले उन्होंने अपने दामाद को, चूंकि इनका हसब नसब भी था और आल औलाद भी काफ़ी हो गई थी, तो उन्होंने इनको बैतुल्लाह की तौलियत दे दी। बनू खुज़ा ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मुसालियत हुई और कत्ल गारत हुई, फिर मुसालियत हुई और बनू कुसई को ये बैतुल्लाह की तौलियत मिल गई, ठीक है। तो कुसई का इस एतबार से मुकाम और मर्तबा है कुरैश में कि इन्होंने बैतुल्लाह जो है वो वापस लिया है, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना आप कह लें कोई 450 के राउंड अबाउट, 450 ईस्वी के करीब में ये काम हो रहा था, ठीक है। कुसई ने एक और काम किया 460 में, 460 में दारुन नदवा की बुनियाद रखी। ये बैतुल्लाह के बिल्कुल सामने एक इमारत थी और इसमें वो कुरैश की आप कह लें कि एक तरह से पार्लियामेंट थी, मजलिस मुशावरत थी। उनके तिजारती काफ़िले आते जाते रहते थे तो यहाँ पे मुशावरतें होती थी। कुसई जो है ना बेसिकली असल में इनकी जो इनके जो वालिद थे ये बचपन में ही फोत हो गए, तो इनकी वालिदा ने दूसरा निकाह कर लिया। अब जो दूसरा निकाह किया था वो साहब बनू अज़रा कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। बनू अज़रा जो है वो शाम की सरहद कह लें या शाम में था। तो ये अभी छोटे थे कि अपनी वालदा के साथ ये वहाँ शाम शिफ्ट हो गए। तो इन्होंने जवानी तक अपना वक्त को सही ने शाम में गुजारा। तो शामी रियासत को इन्होंने बहुत करीब से देखा, यानी रोमन एम्पायर को। तो वहाँ जब उन्होंने देखा कि बड़ी सल्तनतें किस तरह से चलती हैं और उनके कैसे डिपार्टमेंट्स हैं, शोभा जात हैं, तो वो सारा तजर्बा और स्किल ले कर आए थे यहाँ मक्का में। तो यहाँ आते ही उन्होंने एक तो यह है कि कुरैश को वो बैतुल्लाह की तौलियत वापस दिलवाई और दूसरा दारुन नदवा कायम कर दिया, मजलिस मुशावरत जो है वो बना दी। फिर इन्होंने जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए थे कुसई ने, ठीक है। एक तो सकाया का डिपार्टमेंट था, यानी हाजियों को पानी पिलाना, जमजम से पानी पिलाते थे, ठीक है, उसको इन्होंने मुनज़्ज़म किया, आर्गेनाइज किया। लेकिन जमजम अभी नहीं था, अभी जमजम नहीं था। उसकी वजह यह है कि जमजम जो है ना मरूर ज़माना के साथ कहीं दब गया था, तो कुसई के दौर में जमजम नहीं था। तो इन्होंने मक्का में जो है वो एक कुआं भी खुदवाया ताकि हाजियों को पानी पिलाने का ख़ास तौर पे एहतमाम किया जा सके। तो एक ये डिपार्टमेंट इन्होंने शुरू किया जो सिकाया कहलाता था। दूसरा जो डिपार्टमेंट था ये रिफादा था। रिफादा जो है इन्होंने एक कुरैश के ऊपर सालाना टैक्स आयद किया कुसई ने, और कहा कि जी हर बंदा कंट्रीब्यूट करेगा साल में इतना, और मकसद उसका क्या है कि हमने हाजियों की मेहमान नवाजी करनी है और उनको मतलब फ्री में खाना खिलाना है, फी सबीलिल्लाह खाना खिलाना है। तो गोया हाजियों की खिदमत का जज्बा इनमें था, इन लोगों में था, और ये उसको नेकी समझते थे, क्योंकि बैतुल्लाह को जहरी बात है अल्लाह का घर समझते थे। तीसरा नदवा था जिसकी बात हुई है, ठीक है, दारुन नदवा ये कहलाता था। आप सल्लम की जब बेसत हुई है तो उस वक़्त भी दारुन नदवा मौजूद था। चौथा जो है वो हिजाबा था। हिजाबा के अंदर जो है वो कई एक डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। बेसिकली तो ये खाना काबा के हवाले से जो ख़ास तौर पे चीज़ें थी, जैसे एक बड़ी चीज़ ये थी कि खाना काबा की जो कुंजियाँ हैं, ठीक है, वो किसके पास होगी। दूसरा उसके गिलाफ के हवाले से कि उसको किसने तैयार करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें थी बैतुल्लाह की सफाई के हवाले से, तो ख़ास बैतुल्लाह से मुतालिक जो चीज़ें थीं उनका एहतमाम। फिर बैतुल्लाह के अंदर जो अमानतें पड़ी होती थी, जो नजराने पड़े होते थे, उनकी देखभाल करना, ये सब हिजाबा में आ जाता था। फिर लिवा था, लिवा झंडे को कहते हैं, यानी जंगों में जो ख़ास तौर पे कुरैश की जंगें होती थीं दूसरे कबीलों के साथ, तो उसमें झंडा जो है वो किसके पास होगा। तो कुसई के जो औलाद थी उनमें एक तो अब्द मनाफ थे, ठीक है, दूसरे अब्दुल उज्जा थे और तीसरे अब्दुद्दार थे, ठीक है। अब्दुल उज्जा के बारे में हमने पढ़ लिया है पीछे। तो अब हुआ ये कि अब्दुद्दार जो है ना ये बड़े थे, तो कुसई जब फोत होने लगे तो उन्होंने अपने सारे जो आप कह लें कि जी शोभा जात थे, जिम्मेदारियां थीं बैतुल्लाह के हवाले से, जो उन्होंने ये डिपार्टमेंट्स कायम किए थे, ये पांचों के पांचों उन्होंने क्या किए, अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए। उसकी वजह ये बताई जाती है कि अब्दुद्दार जो है कमज़ोर थे, माली एतबार से कमज़ोर थे, या औलाद नहीं थी उनकी ज़्यादा। अब्द मनाफ जो है ना ये कुसई की मतलब जीते जागते ही साहिब सरवत हो गए थे, और आल औलाद भी इनकी बहुत फैल गई थी। तो जैसे होता है ना बाप में कि यार अब इसको क्या ज़रूरत है, ठीक है, इसका तो काम चल रहा है, तो जिसका नहीं चल रहा ना उसको कुछ दे जाओ। तो कुसई ने जो है वो सारे डिपार्टमेंट जो है वो अपने बेटे अब्दुद्दार को दे दिए वफात से पहले। अब कुसई के जहरी बात है ज़िंदगी में तो अब बाप से कौन झगड़ा कर सकता है, लेकिन जैसे ही कुसई गए हैं ना तो झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने कहा भाई हम भी उसी बाप की औलाद हैं, तो पांचों डिपार्टमेंट्स तो आपके पास नहीं जा सकते, ठीक है, पांचों शोबाजात आपके पास नहीं जा सकते। इससे जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर उसके बाद जब मुसाहलत हुई है तो दो डिपार्टमेंट्स अब्द मनाफ के पास आ गए, ठीक है। अच्छा, ये बनू हाशिम अब्द मनाफ में से हैं, अल्लाह के रसूल सल्लम का जो ख़ानदान है ये अब्द मनाफ में से है। तो जब मतलब बेसत हुई है रसूल सल्लम की, तो उस वक़्त भी आपके जो चचा थे अब्बास रदी अल्लाह अनु, तो वो सकाया के इंचार्ज थे, ठीक है। रिफादा भी इनके पास था खाना खिलाना। तो आप यूं कह लें कि खिदमत खल के जो शोबे थे ये बनू हाशिम में आ गए। अच्छा, रसूल सल्लम की जब बेसत हुई है ना, तो आपके ख़ानदान में हम आगे चल के देखेंगे कि ईमान लाने वालों में कौन थे ज़्यादा, बड़ी तादाद में बनू हाशिम थे। उसकी वजह क्या थी, खिदमत खल कर कर के दिल की नरमी पैदा हो गई थी, और इसलिए इनमें आपको नेकी भी ज़्यादा नज़र आएगी बनू हाशिम में। अच्छा, दूसरी तरफ जो थे वो देखें, वो ज़रा सियासी किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, नदवा मुशावरत हो रही है, ठीक है, काफले आ रहे हैं जा रहे हैं, फलां के साथ जंग करनी है, लड़ना है, झंडा किसके हाथ में होगा, ठीक है, बैतुल्लाह की चाबियां हमारे पास हैं, ये सारे सियासी मुनासिब थे, हमारी मर्ज़ी से अंदर दाखिल होगा बंदा, अंदर जो ख़जाने पड़े हैं बैतुल्लाह के अंदर, वो वजारत ख़जाना भी आपके पास आ गई, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा सियासत चली है। उधर लेकिन वो सियासत भी फिर इधर आ गई बनू अब्दे मनाफ में, हम आगे चल के उसको भी देखते हैं। तो खैर बहरहाल ये एक फ़र्क भी पड़ा है अखलाक के ऊपर भी बनू अब्दे मनाफ में और बनू अब्दिद्दार में जाके। तो इसके बाद फिर सीरत निगारों ने देखा कि बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि ये डिपार्टमेंट सिर्फ 5 नहीं थे बल्कि 10-11 थे, कुछ और भी डिपार्टमेंट्स जो है वो कुसई ने वक़्त के साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो कुसई ने बेसिकली ये सारा तजर्बा शाम से लिया था, क्योंकि अभी वो दूध पीते बच्चे थे कि उनकी माँ जो है उनका निकाह हो गया था किसी शामी से, और उन्होंने अपना सारा बचपन क्या जवानी तक वहाँ पर गुजारी। यहाँ तक फिर ये हुआ कि एक दफ़ा लड़ाई में किसी ने गुस्से में कह दिया कि तू तो इस कबीले का है ही नहीं, ठीक है। तो फिर उन्होंने माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि हाँ वाकई ये बात ठीक है, लेकिन तेरे बाप का हसब नसब जो है वो इनसे बहुत बेहतर है। फिर कुसई जो है वो जवानी में फिर आए थे यहाँ पे बैतुल्लाह में। खैर बहरहाल तो वो एक तजर्बा जो है ना जो लेके आए थे, एक सियासी तजर्बा शाम से, तो वो उन्होंने यहाँ आके मक्का की एक रियासत कायम की, यानी जिसे कहते हैं कि सिटी स्टेट। कुसई से पहले जो है ये कबायली निज़ाम था, कोई बाकायदा स्टेट हम इसको नहीं कह सकते, रियासत नहीं कह सकते, लेकिन कुसई ने आके जिस तरह से डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उससे ये एक सिटी स्टेट बन गई, एक छोटी सी रियासत वजूद में आ गई। यानी उन्होंने उमूर को मुनज़्ज़म किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, कुसई ने आके ना। इसके बाद जो है कुसई के, अब देखें हमने कहा कि 3 बेटे थे, एक अब्दे मनाफ को तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अब्दुल उज्जा को हमने डिस्कस किया, और अब्दुद्दार। असल में तो झगड़ा इन दो में चला ना, अब्दे मनाफ की औलाद ज़्यादा थी और अब्दुद्दार कमज़ोर थे और बड़े थे, तो कुसई ने उनको नवाज दिया, तो वो तगड़े थे अब्दे मनाफ, तो वो फिर लड़े इनसे, ठीक है। तो खैर ये दोनों फिर नुमाया हो गया कुसई की औलाद में, अब्दे मनाफ और अब्दुद्दार। जी किसकी इस पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब्दुद्दार जो है ना उनके 2 बेटे थे अब्दे मनाफ, यानी अब्दुद्दार के बेटे का नाम भी अब्दे मनाफ था। अच्छा अरबों में ये बहुत है, बाप के नाम पे बेटे का नाम रख दिया, बंदे का मतलब सारी घूम जाता है कि यार किसकी बात हो रही है, बाप की हो रही है बेटे की हो रही है, ये बहुत ज्यादा है उनमें, ठीक है। तो अब्दुद्दार के बेटे का नाम जो है, यानी उनका भाई भी अब्दे मनाफ है और बेटे का नाम भी अब्दे मनाफ है। इधर देखें, इधर दूसरे बेटे का नाम अब्दुल उज़ा रख दिया, उधर भाई का नाम भी अब्दुल उज़ा है। अब बात समझ रहे, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंटर से कर लेते हैं। तो अब्दुद्दार के 2 बेटे थे, एक तो अब्दे मनाफ, ठीक है। अब्दे मनाफ में फिर आगे उनका एक बेटा था किल्दा, किल्दा का बेटा इल्कमा या अलकमा, अलकमा का बेटा हारिस, हारिस का बेटा नज़र, इसका नाम आपने सुना होगा नज़र बिन हारिस सीरत की किताबों में, ठीक है, इसका नाम मिलता है। ये कुरैश के सरदारों में से था, ये बनू अब्दिद्दार में से। इसने क्या काम किया, ये जो है ना शाम और ईरान, क्योंकि ये ताजिर तो थे, 7 पुश्तों से तिजारत चली आ रही थी, ठीक है, कुरैश के अंदर ना। तो इसने क्या काम किया नज़र बिन हारिस ने, कि ये शाम में गया और दूसरी तरफ ईरान में गया, तो वहाँ से किस्सा गो ले आया, यानी शाम से लोंडियाँ लेके आया, या बाद लोगों ने ये कहा कि शाम से जो है ना वो गाने बजाने वाले आलात ले आया, मौसीकी के आलात, और ईरान से जो है वो किस्सा गो लेके आया, या किस्से और कहानियाँ लेके आया, मतलब उनके यहाँ जो पुराने आबा अजदाद की थी। तो ये क्या करता था, लोगों को कहता था देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो तुम्हें किस्से सुना रहे हैं ना, तो उससे बेहतर ये मेरे किस्से हैं। तो ये मजलसें लगाता था और उसमें फिर किस्से सुनाता था, या किस्सा गो लेके आता था और उनको ट्रेन करके जो है वो कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तुम भी किस्से सुनाओ, और इसी तरह से कुरान के मुकाबले में आलात मौसीकी को तरजीह देता था। कुरान ने एक जगह इशारा भी किया ना, वमिन अन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, ठीक है, सूरा किसके अंदर है, गालिबन लुकमान में है, कि लोगों में से वो भी है कि जो लहवल हदीस खेल तमाशे की बातें जो है उनकी खरीदो फरोख्त करता है, ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गाफिल करें। तो ये खैर जंग बदर में मारा गया, بلکہ اسی کے بارے میں آتا ہے نظر بن حارث کے بارے میں کہ اسی نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہے نا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا. اب یہ مجمع میں کھڑا ہو جاتا تھا, کہتا تھا دیکھو میں نے تو دعا کی ہے, پتھروں کی بارش ہوئی نہیں ہوئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ نہیں ہے. اگر ہوتے تو فوراً ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی. تو یہ خیر بدر میں جو ہے وہ مقتول ہوا تھا, اور اسی کے بارے میں آتا ہے, بلکہ بعض مفسرین مطلب سیرت نگاروں نے تو کہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی 10 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب, یہ والی آیات بھی کہ ہمارے پروردگار ہمارا حساب ذرا جلدی کر دے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا بڑا حساب کتاب ہوگا, تم ایمان نہیں لا رہے, آخرت میں پتہ نہیں ہوگا, تو یا اللہ ذرا جلدی کر دے. پھر ایک اور جو قرآن کی آیت ہے, سال سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والا جو ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ عذاب واقع ہو جائے, عذاب مانگ رہا ہے وہ. تو اللہ نے کہا کہ بھائی وہ دور نہیں. ٹھیک ہے, تو خیر بہرحال یہ نظر بن حارث یہ ان میں سے تھا, بنو عبد الدار میں سے تھا. ٹھیک ہے, قصی کی اولاد میں سے. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ مصعب بن عمیر, مصعب بن عمیر ایک بڑی شخصیت ہیں جو کہ ایمان لے آئے تھے, ان پہ ہم نے گفتگو کی. ٹھیک ہے, تیسرے جو ہے وہ عامر بن ہاشم, یہ بنو عامر جو تھے جب آپ سلم کی بعثت ہوئی تو ان کے پاس ندوہ تھا, یہ دار الندوہ ان کے پاس تھا, بنو عامر کے پاس تھا. نہیں نہیں, عمیر نے, عمیر نے, مصعب بن عمیر, مصعب بن عمیر ایمان لائے تھے. تو بنو عامر جو ہے نا ان کے پاس ندوہ تھا, دار الندوہ, پارلیمنٹ, مجلس شورا ان کے پاس تھی, یعنی بنو عبد الدار میں سے. ٹھیک ہے, پھر دوسری طرف بنو عبد الدار میں عبد العزیٰ کی اولاد میں عبداللہ, پھر ان کی اولاد میں طلحہ, طلحہ کے پاس جو ہے وہ جھنڈا تھا, بنو طلحہ کے پاس لوا ہوتا تھا, بلکہ احد میں بھی جو جھنڈا تھا مشرکین کی طرف سے وہ بنو طلحہ کے پاس تھا. یہ بنو عبد الدار ایمان نہیں لائے تھے, میجورٹی ایمان نہیں لائی تھی. دیکھیں کچھ تو ایمان لے آئے نا, جیسے مصعب بن عمیر, لیکن جب ہم بات کرتے تو مراد ہوتی ہے میجورٹی, اکثریت. دوسرا جو تھا تھے طلحہ کے بیٹے عثمان, تو بنو عثمان کے پاس پھر کنجیاں آئیں بیت اللہ کی, بلکہ یہ عثمان بن طلحہ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے, یا بعض نے یہ بھی کہا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا وہ پھر ہجرت کر لی تھی مدینہ کی طرف, وہاں ہی قیام جو ہے وہ کیا تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے ساتھ ایمان لائے تھے. بہرحال مصعب کو بھی اسی وجہ سے جھنڈا دیا کہ یہ جی 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 بنو عبد الدار میں جھنڈا رہا ہے نا, لوا ان کے پاس رہا ہے, ان کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے ہیں بیت اللہ میں, عثمان بن طلحہ کے ساتھ, اور آپ نے جا کے بیت اللہ کی تطہیر کی ہے, وہ آگے تذکرہ آئے گا اس کا, مطلب بتوں سے اس کو پاک کیا ہے. تو پھر کنجیاں واپس آپ نے ان کو دے دیں, یعنی ان سے لے کے پھر انہی کو دے دیں, اور کہا کہ اگر کوئی تم سے یہ کنجیاں چھینے گا نا تو وہ ظلم کرے گا. پھر کسی نے ان سے لی نہیں, تا حیات کنجیاں انہی کے پاس رہیں, بلکہ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کے, ہاں ابھی بھی بیت اللہ کی جو کنجیاں ہیں وہ انہی کے خاندان میں ہیں, بنو عبد الدار میں. تو ان کے جو والد تھے وہ جو اوپر عبداللہ, یہ جنگ احد میں مارے گئے تھے, ان کے ہاتھ میں قریش کا جھنڈا تھا, یہ عبداللہ, ان کا نام ابو طلحہ تھا, کنیت ابو طلحہ تھی, عبداللہ بھی کہتے ہیں. جنگ احد میں قریش کا جھنڈا جو ہے وہ ان کے پاس تھا. خیر بہرحال تو بنو عبد الدار کا ایک تعارف آ گیا ہمارے سامنے کہ ایک طرف یہ لوگ تھے, ٹھیک ہے, جن کے پاس بیت اللہ کی کنجیاں تھیں اور قریش کا جھنڈا ان کے پاس ہوتا تھا اور دار الندوہ ان کے پاس تھا. ٹھیک ہے, دوسری طرف عبد مناف کے بیٹوں میں خاص طور پہ دو تقسیمیں ہوئیں, ایک ہاشم اور ایک عبد شمس, ये हम आगे चल के इसको ज़रा वाज़े करते हैं। हाशिम जो है, यानी अब हम बनू अब्दे मनाफ की तरफ आ रहे हैं। अब्दे मनाफ के चार बेटे थे, ठीक है, हाशिम, अब्दे शम्स, अल मुत्तलिब, ये अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, अल मुत्तलिब है, और नौफल। तो बनू हाशिम जो है वो, इन्होंने तिजारत को ज्यादा फोकस किया। ये हाशिम जो है ना, ये आप सलम के परदादा है, ठीक है। कहा यह जाता है कि असल में इन्होंने तिजारत को जो है वो क्या किया, मुनज्जम किया कुरैश में। यानी इससे पहले कुरैश आते जाते रहते थे, तिजारत तो करते थे, लेकिन यह है कि रिखलत अश्शिताए वस्सईफ, कि एक तिजारती सफ़र लाजमन करना है सर्दियों में और एक गर्मियों में। ये जो है वो हजरत हाशिम ने जो है वो इसकी बिना डाली थी। तो सर्दियों में ये लोग यमन की तरफ जाते थे और नीचे हबशा की तरफ, यमन के साथ ही था ना हबशा, और गर्मियों में ये ऊपर जाते थे शाम और फलस्तीन की तरफ, और आगे फिर तुर्की में अंकरा तक पहुंच जाते थे। उस वक्त तो उसको कुस्तुंतीनिया कहते थे। तो हाशिम जो है ये तिजारती सफर पे, अजीब बात यह है कि आप इनके जब उठा के देखते हैं इनकी वफात अक्सर सफ़र में हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग हालत सफ़र में ही रहते थे। मतलब घर लगता है कि जैसे कम रहते थे और तिजारत के लिए सफ़र में ज़्यादा रहते थे। हज़रत हाशिम की वफ़ात भी सफ़र में हुई, आप सलम के अब जो वालिद थे हज़रत अब्दुल्ला, उनके बारे में भी आएगा, वो भी सफ़र में उनकी वफ़ात हुई, वो भी तिजारती सफ़र था। फिर जो आगे इनके भाई अलमुत्तलिब हैं, ये भी सफ़र में फोत हुई है तिजारती सफ़र में। खैर बहरहाल, तो हाशिम जो है ना ये शाम की तरफ जा रहे थे, तो मदीना में एक कबीला था खजरज का, खजरजी कबीले के जो है वो एक सरदार थे अमर बिन जैद, तो बनू नजार कहते हैं उनको ख़ानदान को। तो उनकी बेटी से हाशिम ने शादी की। देखिए ना, ये जब गुजरते थे ना, ये देखे ना, ये हमने पहले भी देखा था, ये था ना मक्का, ये मक्का है, ठीक है। तो यहाँ से जब ऊपर जाते थे तो ये मदीना से गुजर के जाते थे ना, ठीक है, और ये तिजारती रूट था, ये तिजारती रूट था, ठीक है। और ये नीचे जो है वो यमन है, ये नीचे यमन है, और यमन से फिर इधर अक्सूम, ये अक्सूम की सल्तनत जो हबशा कहलाती है, ये वाली मौसम की वजह से, मौसम की वजह से कि मौसम बेहतर है। तो ये तिजारती रूट्स हैं, ये जो पर्पल में आपको नजर आ रहे हैं ना, तिजारती रूट्स हैं। इसमें देखें बहरी सफर भी हैं, ये बहरी रूट्स भी हैं, ठीक है, समुद्री सफर। कुरान ने तस्करा किया ना उनके समुद्री सफरों का, कि जब समुंदर में तूफान आता है तो अल्लाह को पुकारते हैं, ठीक है। तो समुद्री सफर भी करते थे ये मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। तो बड़े ताजर थे, यानी कहने का मकसद यह है कि मक्का के लोग जो है वो बड़े ताजर थे। तो हाशिम जो है ये शाम के सफर पर थे कि रस्ते में मदीना में इन्होंने पड़ाव किया, और मदीना में जो है वो खजरज के एक खानदान बनू नजार, उनके सरदार की बेटी से जो है वो इन्होंने निकाह किया, शादी की, अमर बिन जैद। तो वो चंद दिन वहाँ पे रहे मदीना में, फिर उसके बाद वो आगे शाम में चले गए कि वापसी में मैं इनको ले जाऊँगा। तो जब शाम में गए तो फिर शाम में उनकी वफात हो गई, वापस नहीं आ सके। लेकिन ये है कि हाशिम की जो बीवी थी, सलमा नाम था उनका, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, और उनसे फिर बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। यानी उस बच्चे ने भी अपना बाप नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब ने भी। उनके वालिद हाशिम जो थे अब्दुल मुत्तलिब के, यानी आपके दादा के, जो वालिद थे हाशिम, वो तिजारती सफ़र पे वो भी फोत हो गए थे। ये देखें हिस्ट्री रिपीट हो रही है। फिर हुआ ये कि वो हाशिम तो वहाँ पे फोत हो गए, अब ये प्रेग्नेंट थी, बाद में इनके बच्चा पैदा हो गया अब्दुल मुत्तलिब। तो अब्दुल मुत्तलिब मदीना में रहे, मदीना में ही पैदा हुई है और मदीना में ही रहे। यहां तक कि हुआ ये कि हजरत हसन बिन साबित जो मारूफ शायर हैं, इनके जो वालिद हैं साबित, ठीक है, वो एक दफा उमरा के लिए आए यहां पे मक्का में, तो उन्होंने अल मुत्तलिब को देखा। ये अल मुत्तलिब कौन है? हाशिम के भाई हैं। और वो हजरत हसन बिन साबित के वालिद ने कहा अल मुत्तलिब को कि यार देखो, तुम्हारा भतीजा जो है ना, मैंने मदीना में देखा है, और 7-8 साल का लड़कों के साथ तीर अंदाजी कर रहा था, और उसका निशाना ऐसा पुख्ता निशाना कि मैं हैरान रह गया इस उम्र में। और जब उसका निशाना लगता है ना, तो वो फिर जैसे वो बच्चे नाचते हैं ना तो वो फिर कहता है कि मैं हाशिम का बेटा हूं, मतलब फख्र करते हुए ना। तो अब अल मुत्तलिब ने जब ये सुना तो ये बेचैन हो गए कि हमारी औलाद है, ठीक है, तो उसकी सलाहियतों के बारे में भी सुना, तो ये फौरन उन्होंने ऊँटनी पकड़ी और कहा कि मैं तो लेके आऊँगा, अभी भतीजे को अभी लेके आऊँगा। तो ये जब वहाँ पर गए हैं अब, तो बाद रवायतों में ये है कि जब वहाँ गए हैं तो वहाँ के लोगों ने कहा कि देखो, बात यह है कि माँ जो है ना बच्चा नहीं देगी 7-8 साल का हो गया, जहरी बात है माँ क्यों देगी आपको बच्चा, तो इसलिए आप उनकी इजाज़त के बगैर ले जाएं। दूसरी कुछ रवायतों में यह है कि नहीं, उन्होंने वालदा से इजाज़त ली थी, तो ज़्यादा यही बेहतर महसूस होता है कि शायद इजाज़त ली। और उन रवायतों में भी यह है कि माँ ने शुरू में तो बड़ी पसों पेश की, लेकिन बिल आखिर उसने इजाज़त दे ही दी कि ख़ानदान उनका है, फिर उन्होंने कायल भी कर लिया, तो वो खैर ले आए। जब वो लेके आ रहे थे मदीना से अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल मुत्तलिब 7-8 साल के थे, कौन लेके आ रहा था? अल मुत्तलिब। तो उनकी हालत जो है ना अच्छी नहीं थी, मतलब कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए थे, ठीक है, मक्का में ज़रा खुशहाली थी, ये लोग ताजिर पेशा थे कुरैश वाले, इनमें खुशहाली थी, लेकिन मदीना वाले ज़रात पेशा थे, इतनी खुशहाली नहीं थी। तो बाप भी नहीं था, गरीब बात है, माँ ने अब क्या खर्च करना था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने उनको अपने साथ ऊँट पे बिठाया हुआ था, तो रास्ते में लोग हैरान होकर पूछते थे कि अब्दुल मुत्तलिब, आप सरदारा ने कुरैश में से, तो ये मफलूकुल हाल बच्चा। तो वो फिर कहते थे कि ये मेरा ग़ुलाम है, ये क्या है, ये मेरा ग़ुलाम है, अब्दुल मुत्तलिब है। तो इससे उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ गया। बेसिकली उनका नाम जो है वो शैबा था, आप सलम के दादा का नाम शैबा था। तो वो जब अल मुत्तलिब लेके आए हैं उनको मक्का में, तो फिर उन्होंने नहलाया धुलाया, अच्छी पोशाक पहनाई है, जैसे कुरैश का भाई अब सरदार का बेटा है। फिर लेके गए हैं वहां कुरैश की मजलिस में और बताया कि ये हाशिम का बेटा है और मेरा भतीजा है और मैं मदीना से लेके आया हूं। लेकिन अब नाम एक पड़ चुका था अब्दुल मुत्तलिब, तो उसी से मारूफ हो गए। अब एक और अहम बात जो यहां पे समझने वाली है कि हाशिम और अब्द शम्स ये दोनों भाई हैं। कहा यह जाता है, रवायतों में आता है कि जब ये पैदा हुई है ना, तो इनकी दो उंगलियां जुड़ी हुई थी दोनों की, तो वो उंगलियां जब अलहदा की गई ना, तो काफी खून निकला, उससे ये बदशगुनी ली गई कि इनमें खून रेजी होगी, बनू हाशिम में और बनू अब्द शम्स में, क्योंकि उमैया जो है ना वो अब्द शम्स की औलाद है, उमैया जिन्हें बनू उमैया कहते हैं। तो नस्बी एतबार से ये दोनों करीब हैं, हाशिम और अब्द शम्स ये जुड़वां भाई हैं, ट्विंस हैं, यानी आप देखें ना उस एतबार से, नस्बी एतबार से ये ज्यादा करीब हैं। लेकिन اسلام میں آ کے زیادہ قریب کون ہے گیا؟ ہو گیا بنو ہاشم اور بنو مطلب. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ المطلب نے کیا کیا, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کو پالا, بڑا کیا. تو اس لیے المطلب اور بنو ہاشم ایک سائڈ پہ ہو گئے, ٹھیک ہے, اور عبد شمس اور نوفل ایک سائڈ پہ ہو گئے. وہ کیوں ہوئی ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, آگے جیسے جیسے چلتے ہیں نا تو وہ ہم اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں. یہ دونوں جڑواں بھائی تھے اور ان کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں جب یہ پیدا ہوئی ہے نا, تو انگلیاں علیحدہ کی گئی نا تو وہ خون نکلا, جس سے یہ بدشگونی لی گئی کہ ان میں خون ریزی ہوگی, یعنی دونوں کی اولادوں میں, اور وہ ہوئی بھی بعد میں. جی دونوں کی انگلی, ہاں دونوں کی جو ہے وہ انگلیاں جڑی ہوئی تھیں. اچھا ایک وہ روایت جو ہے نا ابھی ذرا ہم ایک دیکھ لیں جس میں, ہاں یہ والی روایت یہ دیکھیں نا, یہ اب روایت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. جی چینج نہیں ہوا, اچھا ایک منٹ میں اس کو بند کرنا پڑے گا. وہ اصل میں اس کی حالت ایسی نہیں تھی نا, کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا, اور اگر کوئی یقین کر لیتا تو پھر سوالات کرتے, آپ کا بھتیجا اور اس حال میں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اس سارے مکالمے سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا بھائی میرا غلام ہے, جو بھی رستے میں ملتا تھا کہتے تھے میرا غلام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ خود تو وہ ظاہری بات ہے سرداروں والے حلیے میں تھے نا, تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اچھا یہ اب روایت, ہاں روایت اب واضح ہو گئی. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جبیر بن متم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس دن یوم خیبر تھا نا, ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ داروں کا حصہ نکالا. واضح رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ذی القربہ, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا حصہ نکالا, اور آپ نے جو اپنا حصہ تقسیم کیا کس میں؟ بنو ہاشم میں اور بنو مطلب میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ بنتا تھا مال غنیمت میں سے وہ آپ نے بنو ہاشم کو دیا اور بنو مطلب کو دیا. اس پہ کیا ہوا؟ اس پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سوال کیا, جیسے حضرت جبیر بن مطم نے بھی سوال کیا اور حضرت عثمان نے بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم بھی جو ہیں وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا جواب دیا کہ نہیں, آپ نے کس کو چھوڑ دیا؟ آگے نا وطارا کا بنی نوفل و بنی عبد شمس, عبد شمس اور نوفل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا, حالانکہ چاروں بھائی ہیں. تو حضرت عثمان نے اور جبیر بن مطم نے جا کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہی اعتراض کیا اللہ کے رسول سے کہ ہم بھی تو جو ہے وہ آپ کے اسی طرح کے بھائی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا تھا کہ دیکھو بنو ہاشم اور بنو مطلب جاہلیت اور اسلام میں جدا جدا نہیں ہوئی ہے, وہی بات کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا, ٹھیک ہے. اب نسبی اعتبار سے تو یہ صحیح بات یہی ہے کہ بنو امیہ زیادہ قریب ہیں نسبی اعتبار سے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ہراول دستہ نہیں بنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں فرق کیا. خیر بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں. عبد مناف میں ہم نے کہا کہ جی چار ان کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, ہاشم, المطلب, عبد شمس اور نوفل. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب تھے جن کو المطلب نے پالا, ٹھیک ہے, مدینہ سے لے کے آئے, جس پہ ابھی ہم نے ڈسکس کر لی. ابھی جو دوسرا بڑا قبیلہ نکلا ہے نا وہ ہے عبد شمس کی اولاد. یعنی عبد شمس کون ہے؟ عبد شمس جو ہیں وہ ہاشم کے بھائی ہیں. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد شمس کے بیٹے ہیں امیہ. یہ دونوں عبد المطلب اور امیہ آپس میں کیا ہیں؟ کزن ہیں. بنو امیہ کوئی علیحدہ ٹرائب نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے, دادا کے کزن ہیں, दादा के कज़न हैं उमैया, वहां से बनू उमैया शुरू हुई है। तो अब्द शम्स के तीन बेटे थे, एक उमैया, ये ज्यादा गालिब आ गए, यहां से बनू उमैया बने, दूसरे रबिया, तीसरे अब्दुल उज्जा। हम आगे चलते हैं इसकी तरफ। उसकी वजह यह है कि ये बनू उमैया जो है ना, ये बहुत फल फूल गए, बहुत बढ़ गए थे ये। तो इन्होंने खास तौर पे जंग में जो सिपा सलारी थी, यानी एक डिपार्टमेंट जिसको हमने नहीं डिस्कस किया, सिपा सलारी का, जैसे आप कह रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सिपा सलार अमूमन बनू उमैया में से होता था। ठीक है, तो अब्द शम्स के तीन बेटे थे, उमैया, रबिया और अब्दुल उस्सा। उमैया के फिर आगे बेटे थे हर्ब। ये हर्ब, हर्ब किसे कहते हैं अरबी में, जंग को। ये हर्ब जो है ना, ये सिपा सलार थे कुरैश के जंगे फिजार में। तो सिपा सलारी बनू उमैया के पास थी। फिर हर्ब के बेटे थे अबू सुफियान, ये भी सिपा सलार रहे, यानी कुरैश की तरफ से। जंगे ओहद में भी सिपा सलारी इनके पास थी, बल्कि खंदक में भी इनके पास थी, यहां तक कि मक्का फतह हो गया तो फिर ये भी ईमान ले आए। अबू सुफियान के बेटे फिर अमीर मुआविया थे, तो ये ईमान ले आए फतह मक्का पे, अबू सुफियान भी और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह। उमैया के दूसरे बेटे थे अबू अम्र। अबू अम्र का जो बेटा था उसका नाम था अबू मुआइद, और अबू मुआइद के बेटे का नाम था उकबा। उकबा बिन अबी मुआइद नाम सुना होगा, ये भी सरदारान कुरैश में से था। अब देखें ना, बनू उमैया में बड़े बड़े सरदार पैदा हुए, मतलब ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए जरा इनकी शान बढ़ गई। उमैया बिन खल्फ में हमने डिस्कस कर लिया, उकबा बिन अबी मुआइद। ठीक है, तो इसके बारे में आता है कि इसने दावत वलीमा की, तो जब दावत वलीमा की तो इसने कहा कि मैं सारे कुरैश के जो है वो मुअज्जज़ अफराद को बुलवाऊंगा। तो ये आप सल्लम की मजलिस में भी बैठता था और आपसे मुतासिर भी था, शुरू शुरू में मुतासिर भी था उकबा बिन अबी मुआइद। तो अल्लाह के रसूल सल्लम को भी इसने दावत दी कि मेरे यहाँ दावत वलीमा है, तो आप भी आए, कुरैश के सारे सरदार आ रहे हैं। तो आप सल्लम फरमाया कि देखो बात यह है कि तुम मेरी दावत पहले कबूल कर लो, फिर मैं तुम्हारी दावत कबूल करूँगा, और वो कलमा पढ़ने की है। शुरू में आप सल्लम की रगबत ज़्यादा होती थी कि ये सरदार हैं, ये कबूल कर लेंगे ना तो इस्लाम फैल जाएगा। इसने पढ़ भी लिया, इसने कलमा पढ़ लिया था, यानी सीरत निगारों ने लिखा है। लेकिन हुआ ये कि जब ये गया है अपने दोस्त के पास, उमैया बिन खल्फ के पास, इसका दोस्त था उमैया बिन खल्फ, वो भी सरदाराने कुरैश में से था, उसने जब सुना तो वो इससे नाराज हो गया। वो इसका आप कह लें क्लोज फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड कह लें, वो इतना नाराज हुआ, उसने कहा मेरी तेरी दोस्ती खत्म, जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे थूक के नहीं आएगा ना, उस वक्त तक मैं तो उससे राजी नहीं हूँगा। तो ये बदबख्त जो है वो फिर उसके आ गया, उसके बहकावे में आ गया, हालांकि वैसे आप सलम की कदर करता था, लेकिन उस दोस्ती की खातिर आ गया। तो ये फिर बदर में मकतूल हो गया, बदर में मारा गया। कहा हाँ, ये भी बदर में कत्ल हुआ। बल्कि इसी के बारे में कहा जाता है कि ये जो कुरान की आयत है, वो यौम याद ज़ालिमु अला यदैही यकूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअ रसूलि सबीला, कि ज़ालिम क़यामत वाले दिन जो है वो अपने हाथ काटेगा और ये ख्वाहिश करेगा कि काश मैंने रसूल को अपना साथी बनाया होता, यानी रसूल को मैंने तरजीह दी होती, लेकिन उसने अपने दोस्त को तरजीह दे दी रसूल पे। इसका बेटा था वलीद बिन उकबा, ये फतेह मक्का पे ईमान ले आया था, वलीद बिन उकबा। ये हजरत उस्मान का जो है वो एक तरह से भाई भी था। हजरत उस्मान रजी लानों ने इसको गवर्नर भी लगाया था। खैर, इसके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी थे, शराब पीने का इल्ज़ाम था हजरत उस्मान रजी लानों के ज़माने में, उस पर हद भी जारी हुई। खैर इस तरह का, लेकिन यह है कि इस्लाम ले आया था, इस्लाम में वो ठीक था। मतलब इसको ओहदा जो है वो हजरत अबू बकर ने भी दिया, हजरत उमर ने भी ओहदा दिया, और शुरू में दावा के डिपार्टमेंट में इसने बड़ा काम किया, ईसाइयों को मुसलमान करने में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वलीद बिन उकबा की। लेकिन करैक्टर में कुछ लोग कहते हैं कि जी कमज़ोरी रह गई थी, क्योंकि शराब घुट्टी में पड़ी हुई थी, तो वो कमज़ोरी कुछ न कुछ लोगों में रह गई थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, वो इल्ज़ाम था। खुद इसका भी कहना ये था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को इसने यही कहा था, मेरे मुखालफीन ने इल्ज़ाम लगाया मैंने शराब नहीं पी। लेकिन ये बहरहाल सही मुस्लिम की रवायत में मौजूद है कि हजरत उस्मान ने हद लगाई थी, हजरत अली से कहा था कि हद जारी करो। तो वलीद बिन उकबा। दूसरा जो है हर्ब के बाद अबू अमर, और अबू अमर के बाद फिर अबुल आस। अबुल आस की औलाद में एक तो हकम है, हकम का बेटा फिर मरवान, मरवान बिन हकम जो मारूफ है बनू उमैया में से, ठीक है, जिसने एक तरह से फिर बनू उमैया को जिंदा किया था। नहीं, नहीं, तो हकम ने जो है, हकम ने इस्लाम कबूल किया था फतेह मक्का के मौका पे, और मरवान बिन हकम तो खैर वो भी जारी बात है। मरवान जो है इसकी पैदाइश के बारे में इख्तलाफ है, कुछ लोगों ने कहा कि 2 हिजरी में है, कुछ ने कहा 4 हिजरी में है। तो जो भी हो, आप सल्लम की वफ़ात अब 13 हिजरी में हुई ना, हाँ सॉरी 11 हिजरी में। तो आप सल्लम की वफ़ात के वक़्त इसकी उम्र कितनी होगी, कोई तकरीबन 8 साल तो होगी, 8 साल होगी। इसलिए बाज़ अहले इल्म का ख्याल ये है कि ये सहाबी, मरवान बिन हकम क्या है, सहाबी। बाज़ का ख्याल ये है कि नहीं, ये सहाबी नहीं, क्योंकि इनके वालिद हकम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ भेज दिया था, और ये अपने वालिद के साथ ताइफ चले गए थे। लेकिन बहरहाल चले भी गए हों, लेकिन फिर भी ये बहुत पॉसिबिलिटी है, 8 साल तो क्या अल्लाह के रसूल को देखा होगा हालत ईमान, बहुत पॉसिबिलिटी है, ताइफ कौन सा बहुत दूर था। तो इसलिए ज़्यादा गालिब गुमान यही है कि ये सहाबी। इमाम बुखारी का अंदाज़ यही मालूम होता है कि ये सहाबी हैं, क्योंकि इमाम बुखारी ने एक मुकाम पे रवायत लाए हैं कि मरवान बिन हकम अल्लाह के रसूल सल्लम से नकल करते हैं, यानी अंदाज़ इमाम बुखारी का ही है कि मरवान बिन हकम किस से नकल कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल से। तो गोया इमाम बुखारी के नज़दीक ये क्या हो गया, ये सहाबियत होगी, वरना तो सनद मुनक़ते हो जाती है ना, सनद मुनक़ते हो जाती। तो ज़्यादा बेहतर यही मालूम हो रहा है। तो इमाम बुखारी ने मरवान बिन हकम से रवायत ली है, बल्कि इनके मरवान बिन हकम से जिन्होंने रवायत लिया उनमें अली जैनुल आबिदीन भी हैं, ठीक है। अली जैनुल आबिदीन अलैहि रहमा को तो जानते हैं ना, जो हजरत हुसैन के बेटे थे, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, उनका नाम था अली जैनुल आबिदीन। तो अहले तशय्यु में जो आइम्मा का कॉन्सेप्ट है, तो वो फिर हजरत अली और फिर उनके बाद हजरत हसन, फिर हजरत हुसैन, फिर उनके बाद इनको इमाम मानते हैं, अली जैनुल आबिदीन को रहिमहुल्लाह। तो अली जैनुल आबिदीन ये सही बुखारी में रवायत करते हैं, किन से, मरवान से। तो मरवान जो है उनके असाज़ा में शुमार होते हैं, उन्होंने इस्तेफादा किया इनसे। खैर बहरहाल हमारे यहाँ एक फ़ज़ा भी बन गई है, और उसमें ठीक है कुछ उनमें कमियाँ कोताहियाँ भी थीं, मरवान बिन हकम में कमियाँ कोताहियाँ भी थीं, वो मिलती हैं, उनको तस्लीम करना चाहिए, ज़ाहरी बात है। तो लेकिन कुछ मुबालगा आराई भी ज़्यादा हो गई है, दोनों तरफ फिर खींचा तानी होती है। उकबा बिन अबी मुआइत, ये भी बदर में मारा गया था। फिर उसके बाद चौथे जो बेटे थे उमैया के, वो अबुल ईस थे। अबुल ईस के बेटे उसैद, उसैब के बेटे अत्ताब, अत्ताब बिन उसैद, ये भी सरदाराने कुरैश में से थे। आप सल्लम ने जिन चार लोगों के बारे में ख्वाहिश का इजहार किया था ना फतेह मक्का के मौके पे कि वो ईमान लेके आए, तो उनमें से ये भी थे, अत्ताब बिन उसैद, ये भी बनू उमैया में से। बल्कि इनको आपने बाद में जो है वो मक्का का गवर्नर भी लगाया। तो इतना भी नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लम को बनू उमैया से कोई बोक्स था, ऐसा भी नहीं था। उनमें ऐसे लोग भी थे जो शुरू में ही इस्लाम ले आए थे, लेकिन मेजॉरिटी उनकी ऐसी थी कि जो रसूलुल्लाह सल्लम की मुखालफत में पेश पेश रही, ये बात थी, ठीक है। तो लेकिन उनमें से भी कुछ लोग फिर फतेह मक्का पे ईमान ले आए और वो अपने ईमान में सच्चे साबित हुए। लेकिन बहरहाल ये एक अलमिया है कि बाद में इनमें बनू हाशिम में और बनू उमैया में फिर मसाइल पैदा हुई। बनू रबिया, दूसरी तरफ जो अब्द शम्स के एक बेटे थे उमैया, उमैया के दूसरे भाई थे रबिया, यहां से बनू रबिया, रबिया के बेटे थे उतबा, उतबा बिन रबिया का नाम मिलता है सीरत में, ठीक है, उतबा बिन रबिया का नाम मिलता है सीरत में। ये सरदारान कुरैश में से था, बल्कि यही वो शख्स था कि जब आप सल्लम ताइफ से वापस आए हैं ना, अहले ताइफ ने बच्चे आप सल्लम के पीछे लगाए, पत्थर फेंके गए, तो आपने एक बाग में जो है वो पना ली थी, तो वो बाग इसका था, उतबा बिन रबिया का। और इसने जो है वो फिर अपने वो कहा था गुलाम को, कहा था कि जाके मोहम्मद सल्लम को पानी पिलाओ। जहरी बात है एक खानदानी वो हमीयत तो थी ना, खानदानी हमीयत थी। तो उतबा बिन रबिया जो है ये जंग फिजार को रुकवाने में इसका अहम किरदार था। यही वो शख्स था जिसने आप सल्लम को तीन चीजें पेश की थी। सीरत में मारूफ वाक्य है ना कि आप सल्लम को तीन चीजें पेश की गई, तो बाद सीरत निगारों ने कहा था कि ये वो सरदार था जिसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें बात यह कि अगर आपको सरदारी चाहिए तो हम सारे कुरैश मिलके आपको अपना सरदार बना लेते हैं, मालो दौलत चाहिए तो आपके कदमों में ढेर लगा देते हैं, किसी सरदार की बेटी से आपने शादी करनी है तो आप बता दें बस उससे आपकी शादी करवा देते हैं, लेकिन आप ये काम छोड़ दें जो आप कर रहे हैं। तो आप सल्लम ने कहा था कि चचा बात ख़त्म हो गई तो कहाँ, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लम ने सूरह फुस्सिलत की आयात तिलावत, जिसमें पिछली कौमों पे जो है वो आसाब का तस्करा था। कहा जाता है कि पहली कोई 10 आयात थी जो आप सल्लम ने उनको 13 आयात सुनाई थी। तो जब आप सल्लम ने पढ़ी हैं तो उस पर बड़ा असर हुआ, जहरी बात है आखरत से मुतालिक और पिछली कौमों पे कैसे अजाब आया जब उन्होंने नबियों को नहीं माना, तो ये फिर खामोशी से उठा है आप सल्लम की मजलस में और फिर कुरैश की मजलस में गया है और उसने कहा भाई बात यह है तुमने मुझे भेजा तो है मोहम्मद सल्लम की तरफ कि आपको मैं राज़ी करूं, लेकिन बात यह है कि उनका जो कलाम है ना, ये जो तुम डिस्कस कर रहे हो ना कि शेर है तो शेर भी नहीं है, तुम कहते हो कहानत है तो मैंने बड़े बड़े काहिन देखे हैं लेकिन ये कहानत भी नहीं, तो मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ। देखो मोहम्मद सल्लम अगर गालिब आ जाते हैं अरब पे जिस तरह से वो चल रहे हैं, दावत उनकी फैल जाती है, कुरैश का नाम होगा, हमारा नाम होगा, समझदारी की बात करो, तुम्हारा कबीला ही गालिब होगा ना, खानदान तो तुम्हारा है। दूसरी सूरत यह है कि इनका रास्ता छोड़ दो, ये मगलूब हो जाएं, मगलूब हो जाएं तो फिर भी तुम्हारा काम हो गया, यानी तुम्हें बुरा नहीं बनना पड़ेगा कि अपने खानदान का आदमी जो है वो तुमने पीछे कर दिया। तो इसने कुरैश के सामने जो है ये जब बात की तो वो सारे भड़क उठे कि हमने तुम्हें किस काम से भेजा था और तू मुतासिर होकर आ गया और हमें उल्टा मशवरे देना शुरू हो गया। अच्छा यही ये समझदार आदमी था, समझदार था मतलब इसकी बातों से लगता है कुरैश में कुछ लोग समझदार थे और उन्होंने वक्त वक्त पे समझदारी दिखाई भी, लेकिन फिर क्या होता था दूसरे उनको भड़का देते थे जो जरा जंग जुआना तबीयत के होते थे, ठीक है। अब जंगे बदर में हुआ क्या है कि जब अबू सुफियान ने पैगाम भेजा है कि जी मोहम्मद सल्लम हमारा काफिला आ रहा है, वो ऊपर से आ रहा था ना, तो मदीना से जो है वो काउंटर करेंगे, आप जो है वो लश्कर भेज दें। तो जब लश्कर यहाँ से निकला है मक्का से अपना काफिला बचाने के लिए, तो अबू सुफियान ने इतला दे दी कि मैं बच के निकल आया हूं। तो उतबा बिन रबिया ने उस वक्त कहा कि लड़ाई करने का फायदा नहीं, काफिले की हिफाजत के लिए हम जा रहे थे, काफिला बचा के निकाल लाए अबू सुफियान, तो अब खामखा। अबू जहल ने फिर भड़काया, नहीं नहीं हम तो वापस नहीं जाएंगे, हम तो लड़ मर के जाएंगे। वो फिर मकतूल भी या मुर्दार भी हुआ जाके वहां पर। तो उसने कहा कि ये तुम बुजदिली कर रहे हो, वो वाली हिस ना भड़काई, अब बुजदिल बन रहे हो, मौत से डर रहे हो, ये वो। तो वो फिर उसने आमादा किया। खैर बहरहाल, तो उतबा बिन रबिया ये भी बदर के अंदर मकतूल हो गया, ये भी मकतूल हो गया, ये भी ईमान नहीं लाया। बल्कि इसका जो बेटा था वलीद बिन उतबा, ये भी बदर में मकतूल हुआ। तो उतबा की बेटी थी हिंद, या हिंदा भी नाम आता है, ठीक, जो अबू सुफियान की बीवी थी। उसने अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए फिर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा को और अनहो को क्या किया, शहीद करवाया था। बाज़ सीरत निगारों ने लिखा है, बाज ने किसी और का भी नाम लिया। खैर बहरहाल, उतबा के बेटों में एक अबू हुज़ैफ़ा थे। अबू हुज़ैफ़ा ने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था, यानी अस्साबिकून अल-अव्वलून में से थे। जी, इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत भी की थी अबू हुज़ैफ़ा ने, ठीक है। बल्कि बदर में जो है इन्होंने अपने वालिद को यानी उतबा को दावत मुबारजत दी, आओ मुकाबला करो। अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया, नहीं ये काम नहीं करना, देखो तुम्हारा बाप है, ठीक है। तो अभी तो जज्बात में जो है वो लड़ाई हो गई, तुम गालिब आ गए, लेकिन बाद में ये ना हो कि इस पे अफसोस हो। और फिर ये भी हो सकता था कि वो उसको इशू बना लेते, ठीक है। कुरैश वो तो पहले इस चीज़ को इशू बनाते थे ना कि बाप के खिलाफ बेटे को जो है वो खड़ा कर दिया, आप सलम ने मना कर दिया, वो तैयार थे अबू हुज़ैफ़ा। जो चौथे जो है वो अबू हिशाम, अबू हिशाम भी सुलह हुदैबिया से पहले ईमान ले आए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली हैं बनू अब्द शम्स, ठीक है। इनमें से बनू उमैया आ गए, बनू रबिया आ गए, और फिर उसके अलावा बनू अब्दुल उस्सा। अब्दुल उज़्ज़ा की औलाद में फिर रबी हैं, रबी की औलाद में अबुल आस हैं। ये अबुल आस जो हैं ये रसूल सल्लम के दामाद हैं, ठीक है, आप सल्लम के दामाद हैं, यानी हजरत ज़ैनब के शोर थे अबुल आस। अबुल आस नहीं, नहीं अमर बिन अलास तो और है ना, वो और है। तो अबुल आस जो हैं ये जो रबी के बेटे हैं, ये अबुल आस जो हैं ये आप सल्लम के दामाद हैं, यानी बनू अब्द शम्स में भी आपने बेटी दी, सिर्फ बनू हाशिम में नहीं दी, बनू अब्द शम्स में भी आपने बेटी दी। ये ईमान नहीं लाए थे अबुल आस, शुरू में ईमान नहीं लाए थे, बल्कि इनको भी कुरैश ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तलाक दे दो, इन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। अबू लहब के बेटों ने दे दी थी, वो तो पता है ना, वो आगे बात आ रही है, उसके बेटों ने दे दी थी, ठीक है। रुकैया और उम्मे कुलसूम आप सल्लम की दो बेटियां वहां पर थी ना, अबू लहब की तरफ थी। तो खैर बहरहाल, ये बदर में फिर कैद हुई है। जब कैद हुए तो इनके फिदिये के लिए इनकी जो अहलियाँ थीं हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने वो हार भेजा, वो मारूफ वाक़ है ना, वो हार जो उन्हें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दिया था शादी के मौके। खैर वाह, तो आप सल्लम जो है वो उसको देख के आप दीदा हो गए। तो अल्लाह के रसूल ने फिर लोगों से मशवरा किया कि अगर यहाँ फिदिये में हम हार लेने के बजाय अब फिदिया ज़हरी बात है सबसे लिया जा रहा था, तो वो आप सलम के दामाद थे, उनसे ना लेते तो एक इम्तियाज़ पैदा होता। तो अल्लाह के सलम ने कहा कि इनका फ़दिया अगर हम ये रख दें कि ये ज़ैनब को मदीना भेज दें, वो भी अभी मक्का में थे, इनके निकाह में थी ज़हरी बात, तो फिर मुसलमानों ने जब इस पर एग्री किया तो फिर उनका फ़दिया यही मुकर्रर हुआ, हार वापस कर दिया गया। फिर उन्होंने वापस जाके जो है वो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को भेज दिया था। इनकी बेटी थी उमामा, अबुल आस की बेटी थी उमामा, यानी आप सल्लम की ये नवासी हो गई ना। ये उमामा का तस्करा आता है रवायतों में कि आप सल्लम इनको कंधे पे बिठा के जो है वो नमाज पढ़ाते थे, बल्कि ये बाद में इन उमामा की शादी हुई हज़रत अली से, वो हम बाद में जाके देखेंगे। हज़रत अली जब तक हज़रत फातिमा रही हैं तब तक शादी दूसरी नहीं की क्योंकि हज़रत फातिमा को पसंद नहीं था ना, ये पसंद नहीं था, लेकिन हज़रत फातिमा की वफ़ात के बाद उन्होंने फिर 7-8 शादियां की। हज़रत अली ने उसके बाद 7-8 शादियां, लेकिन उनकी ज़िंदगी में नहीं की सेकंड मैरिज, बल्कि वो कहीं रवायत है भी, एक मिनट मैं देखता हूँ, जिसमें जो है ना, हाँ, अबू जहल की बेटी के हवाले से एक रवायत है कि हज़रत अली ने अबू जहल की बेटी से मंगनी की। असल में हज़रत अली ने नहीं रिश्ता भेजा था, उन्होंने भेजा था, ठीक है, बनू मखज़ूम ने भेजा था हज़रत अली की तरफ, क्या आप हमारी बेटी से क्या करें, शादी कर लें, मदनी दौर का, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप सलम को इतला मिली, इतला भी कैसे मिली कि हज़रत फातिमा जो है ना वो आप सलम के पास हाजिर हुई और कहा क्या कि आपकी बरादरी का ख्याल है कि आप अपनी बेटियों की हिमायत में गुस्सा नहीं करते, ठीक। तो अब अल्लाह के रसूल ने पूछा भाई मसला क्या है, तो फिर उन्होंने कहा कि अली जो है ना वो अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहते हैं, रिश्ता भी उन्होंने पेश किया था, तो हज़रत अली तैयार हो गए थे, यानी पैगाम निकाह का मतलब यह है कि तय पा गया था। ये सुनकर आप सलम खड़े हो गए और आपने फिर खुतबा दिया और फिर आपने क्या कहा कि मैंने अबुल आस बिन रबी से एक बेटी का निकाह किया, वही जिनका तज़करा भी आया, अबुल आस बिन रबी, तो उसने मुझसे जो बात की उसे सच्चा कर दिखाया, यानी अल्लाह के रसूल ने उनकी तारीफ की कि देखिए उन्होंने मुझसे वादा किया था। अच्छा, वादा क्या किया था, इसमें एक वादा तो ये किया था कि जी मदीना जाऊंगा तो हज़रत ज़ैनब को भेज दूंगा, एक तो ये था। दूसरा, कुछ सीरत निगारों ने ये भी लिखा है कि उन्होंने ये कहा था कि आपकी बेटी पे सोकन नहीं लाऊंगा, कुछ सीरत निगारों ने ये भी लिखा है। अच्छा, इसकी हिकमत क्या है, इस पर हम थोड़ा सा बाद में गुफ्तगू करते हैं इस रवायत के बाद। फिर आप सल्लम ने कहा कि देखो बेशक फातिमा मेरा जिगर गोश है और मैं ये गवारा नहीं करता कि उसे रंज पहुंचे, अल्लाह की कसम रसूलल्लाह सल्लम की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक शख्स के अकद में नहीं रह सकती। फिर हज़रत अली ने इस मंगनी को तर्क कर दिया, बल्कि बाद रवायतों में ये भी है कि आप सल्लम ने कहा कि जो फातिमा को तकलीफ़ देता है तो वो मुझे तकलीफ़ देता है। अच्छा, ये रवायत का टुकड़ा क्या करते हैं अहले तशय्यो हज़रात, हज़रत अबू बकर पे फिट करते हैं बाग़ फदक के मसले में, हालांकि ये रवायत का टुकड़ा अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली के बारे में कहा है, इस मौका पे कहा है। बाद रवायतों में ये भी है कि आप सल्लम ने कहा कि मैं हलाल को हराम नहीं कर रहा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि अली के लिए दूसरा निकाह क्या है हराम है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अली पहले मेरी बेटी को तलाक दे फिर जाके बेशक दूसरा निकाह कर ले, ये तो मेरा हक है ना। तो अल्लाह के रसूल ने इस तरह से बात, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो मामला क्या किया, छोड़ दिया। तो यहां पे एक और चीज आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल ने दूसरे दामाद की तारीफ की है, अब आज समझ रहे। तो खैर, बहरहाल उसमें कुछ लोगों ने इसको मौजू बहस बनाया है कि ये जहरी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लम का ये जो अंदाज था इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक बात तो यह है कि आप सल्लम ने जिस तरह से अपने आप को वक्फ किया हुआ था, बल्कि नबी की ज़िंदगी वैसी जो है वो अल्लाह के दीन के लिए वक्फ होती है, और दीन के रास्ते में जो तकालीफ और आजमाइशें नबियों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं वो ही बहुत ज़्यादा होती हैं, अब उसके साथ ख़ानदानी आजमाइशें भी आ जाएं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखें ना कि अल्लाह ताला ने इस तरह से हालात बनाए कि वो आपको जितनी आजमाइशें आई वो दीन में आई, तो कहीं जगह पे अल्लाह ताला ने आपको फिर फैसिलिटेट किया। तो अब जहरी बात है कि बेटी पे सोकन आ जाती, ठीक है, वो आजमाइशें तो पैदा होनी थी, वो उन आजमाइशों का बर्डन अल्लाह के रसूल सल्लम पे भी आना था। तो जब आप, अब आप देखें, हम में से भी कोई मिसाल के तौर पे दीन का काम करना चाहता है, मिसाल के तौर पे, जहरी बात है, अब हमको कंपैरिजन तो नहीं कर रहे रसूल सल्लम की ज़ात के साथ, लेकिन एक मसले को हम समझ रहे हैं, हम में से कोई दीन का काम करना चाहता है तो वही बंदा दीन का काम कर सकेगा ना कि जो मतलब जहनी एतबार से कोई फारिग हो, जो बेचारा अपने मसाइल में उलझा हुआ है, ख़ानदानी मसाइल में उलझा हुआ है या ख़ानदानी झगड़ों में अगर कोई हम में से कोई उलझा हुआ है तो वो कोई दीन का काम कर सकता है? मुश्किल हो जाएगा ना। तो यही है, एक वजह तो ये बयान की जा सकती, दूसरी वजह ये भी बयान की गई चूँकि वो अबू जहल की बेटी थी तो इसलिए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है ना एक बचपन का तासुर था, यानी उन्होंने देखा था कि उनके वाले के साथ क्या हुआ है, मतलब वो सारी अजियतें, ऊँट की ओजड़ी ला के रखी गई, हज़रत फ़ातिमा ने आके उठाई, ठीक है, और वो ये रखने वाले कौन थे, ये सारे लोग थे। तो अब अगर उसी ख़ानदान से सोकन आती ना तो वो एक बड़ी तकलीफ़ का बाइस बनती। उसके बाद बनू नौफिल आ गया, बनू नौफिल में क्या है, अदी हैं, नौफिल के बेटे, नौफल के बेटे अदी हैं, अदी के बेटे मुतिम हैं, मुतिम के बेटे जुबैर हैं। तो मुतिम बिन अदी ये मारूफ शख्सियत है, इन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया था लेकिन मुसलमानों से हमदर्दी रखते थे, बल्कि आपने पढ़ा होगा सीरत में कि ताइफ से वापसी पे एक शख्स ने आप सल्लम को पनाह दी थी और उनकी पनाह में आप सल्लम मक्का में दाखिल हुए थे, क्योंकि कुरैश ने ये एका कर लिया था कि मोहम्मद सल्लम ताइफ से वापस आएंगे तो हमने मक्का में दाखिल नहीं होने देना। तो वो जो पनाह देने वाली शख्सियत थी ना वो मुतिम बिन अदी थे। आप सल्लम ने इनकी तरफ पैगाम भिजवाया, तो अब जारी बात है बनू नौफिल हैं, हमदर्दी रखते थे, हाशिम के भाई उनकी औलाद में से हैं, ठीक है। तो मुतिम बिन अदी फिर अपने बेटों को लेके आए हैं और आप सल्लम के साथ फिर आए हैं और फिर बैतुल्ला में जो है वो दाखिल हुई हैं और फिर हरम में आके सारे सरदाराने कुरैश को मुखातब करके कहा कि देखो ये मोहम्मद सल्लम है, मैंने इनको पनाह दी है। तो जिसने इनको अजियत देने की कोशिश की ना तो उसने हमारे खिलाफ जंग की। अच्छा, वो उनको पता था ये फिर ना ख़त्म होने वाली ना जंगें शुरू हो जाती हैं, ये कबाइली जो है ना इसमें ये निज़ाम था, इसका एहतराम करते थे, डरते थे या एहतराम करते थे बहरहाल इस चीज़ से। तो ये उन छह लोगों में शामिल थे जिन्होंने बनू हाशिम के साथ जो बायकाट हुआ था ना, एक मुआहिदा लिखा गया था, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो वो मुआहिदा जो है ना वो जब लिख के लटकाया गया था तो इन्होंने उसको फाड़ दिया था, वैसे दीमक भी चाट गई थी, फिर बनू हाशिम में से छह लोगों ने कहा कि यार अब बहुत हो गया बनू हाशिम के साथ मुकाता बायकाट, तो बेचारे जो है वो बड़ा उन्होंने जो है वो बर्दाश्त किया। तो ये भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने वो मुआहिदा फाड़ा था, बल्कि बैत उकबा सानिया के लिए जब साद बिन उबादा आए हैं मदीना से, मदीना से आए थे ना लोग, बैत उकबा उला में भी आए थे, सानिया में भी आए थे, वो हम पढ़ेंगे। तो साद बिन उबादा ये उनके अंसार के सरदारों में से हैं, तो उनको कुरैश ने पकड़ लिया था जब उनको कुरैश को खबर हुई, तो कुरैश ने उनको पकड़ लिया, रोक लिया, तो फिर इन्होंने छुड़वाया था उनको, ये कह के कि ये मेरी काफलों की हिफाजत करते हैं, वहाँ काफले जारी बात है मदीना के करीब से गुजरते थे ना। तो ये उनका बड़ा सिस्टम था कि वो कुरैश के काफलों को कोई नहीं छेड़ता था, उन्होंने आपस में तय किया हुआ था यहाँ से यहाँ तक फलां की हिफाजत में, यहाँ से यहाँ तक फलां की हिफाजत में, बाकी तजारती रूट पे फिर लोग इनकी हिफाजत में चलते थे, जिसको ये आप समझ लें कि अमान दे दें, ठीक है, तजारती रूट वही था, यानी आप यूँ समझ लें कि जी टी रोड, उस पर ये बैठे हुए थे, काबिज़ थे।
मुसलमान नहीं हुए थे आखिरी दम तक मुतमिन अली,
नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं हुए थे,
इनके बेटे हो गए थे।
हाँ इनके बेटे हो गए थे, जुबैर बिन मुतिम। जुबैर बिन मुतिम जो है ना, इनके बारे में भी आता है कि आप सल्लम ने ख्वाहिश की थी फतेह मक्का पे कि ये ईमान ले आए। दूसरे अदी के बेटे थे तुआइमा, ये भी कुरैश के सरदारों में से था ये शख्स, लेकिन आप सल्लम को अजियतें देता था, तुआइमा गाली भी देता था, बल्कि ये भी बदर में मकतूल हुआ। खैर भारत तो मतलब मिले जुले लोग रहे, कुछ ईमान ले आए शुरू में ही अवाइले इस्लाम में, कुछ डटे रहे, कुछ ऐसे थे जो हमदर्दी का इजहार करते रहे, लेकिन यह है कि ईमान नहीं लाए। यानी एक वो ग्रुप था जो हजरत अबू तालिब की तरह था, ठीक है ईमान नहीं लाए लेकिन यह है कि सपोर्ट करते रहे, और एक वो ग्रुप था जो मुखालफत में पेश पेश था, अबू जहल की तरह का था, ठीक है, और एक वो था कि जो असाबिकून अलवलून में से थे, ईमान ले आए जल्दी। आगे आ रहा है इंशाल्लाह। हाशिम की औलाद में फिर अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब जो है ना, इनके 12 बेटे थे बाद में। हाँ बनू अल मुत्तलिब ज्यादा मारूफ नहीं हुई है, ठीक है ज्यादा मारूफ नहीं हुई है। बनू अब्द शम्स ज्यादा मारूफ हुई है, या बनू नौफल ज्यादा मारूफ हुई है। तो असल में तो फिर बनू हाशिम या बनू अब्द शम्स यही रह गए ना, बनू अब्दुल मुत्तलिब जो है वो ज्यादा मारूफ नहीं हुई है। अब हम आगे आते हैं अब्दुल मुत्तलिब की तरफ। हाशिम के बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया। अब्दुल मुत्तलिब जो है ना, इनकी 6 बीवियां थी, ठीक है हमने कहा था अरबों में कसरत अजवाज थी। जो भी आप बड़ा सहाबी निकाल के देखेंगे ना, 8-10 बीवियां, 8-10 बीवियां आम है ये, 8-10 बीवियां, बाज की तो 12-13-14-15 भी चली जाती हैं।
ज्यादा बीवी रख के क्या ये इल्मी काम किया जा सकता है? कहते कि इल्मी काम में तो ठीक रहता है, इल्मी काम में ये टेंशन ज्यादा होती है।
इनका सवाल है कि जी ज्यादा बीवियां रख के जो है वो इल्मी काम किया जा सकता है। बात यह है कि ये वो बात बताए सवाल का जवाब भी जिसकी ज्यादा बीवियां हो, जिसका तजर्बा ही ना हो वो बेचारा क्या जवाब देगा। बस पहले एक कर लें फिर उसके बाद इंशाल्लाह। नहीं ये भी अहम मसला है कि जिसकी अभी एक ना हुई हो तो वो दो के बारे में डिस्कस कर रहा हो कि दो की जा सकती है कि नहीं, असल मसला तो ये। चले बाहर। हाशिम की औलाद जो है उनमें फिर अब्दुल मुत्तलिब हैं। अब्दुल मुत्तलिब की 6 बीवियां थीं जिनसे उनके 10 बेटे थे, 12 बेटे थे। बाज़ ने जो है वो 15 का भी तذکرہ किया, लेकिन 15 शायद गलती है क्योंकि बाज़ के नाम जो है ना वो ज्यादा भी नकल हो गए। हजरत सफिया, ये अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हैं, ठीक है। हजरत सफिया से एक बेटे थे हारिस, फिर दूसरी बीवी हैं फातिमा, फातिमा से बेटे थे अबू तालिब और फिर जुबैर। ये वो नहीं है अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद नहीं है, ये और है, ठीक है ये बेसत से पहले फोत हो गए थे। तो हजरत फातिमा से जो है वो अबू तालिब हैं और जुबैर हैं। फिर उसके बाद जो है इनकी एक बहन भी हैं उम्मे हकीम, इनका नाम बैजा था, यानी आप सल्लम की फूफी। 6 फूफी हैं आप सल्लम की, 12 चचा हैं आप सल्लम के और 6 फूफी हैं। यानी बनू हाशिम काफी फल फूल गए, बनू अब्दुल मुत्तलिब कह लें काफी फल फूल गए। हाँ एक वालिद हो गए तो 11 चचा हो गए, सही कह रहे हैं आप। तो तीसरी जो बीवी थी लुबना, उनसे जो है वो अबू लहब था, ठीक है। चौथी जो बीवी थी हाला, उनसे एक हजल, हजल नाम आता है, और एक मुकविम और एक हमजा थे, हजरत हमजा आप सलम के चचा, और एक जो है वो हजरत हमजा की बहन थी सफिया भी, ये भी ईमान ले आई थी। सफिया का तस्करा मिलता है ना। फिर उसके बाद जो है नुतैला, ठीक है जी, नुतैला जो है उनकी औलाद में हजरत अब्बास थे आप सलम के चचा अब्बास, फिर उसके बाद जरार थे, और फिर कुस्म, फिर एक मुमनिया, उनसे गैदाक थे। थोड़ा सा हम बस इसको खोल लेते हैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो हमने मतलब देख लिया ना कि ये कैसे आए थे यहां पे। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब का झगड़ा हो गया था नौफल के साथ, झगड़ा हुआ था एक कुएं पे, कुआं था बेसिकली में हाशिम का। नौफल कौन हुई है? अब्दुल मुत्तलिब के चचा। हाशिम जब फोत हुई है ना, तो नौफल ने कब्जा कर लिया, ये कुआं था ताइफ में, ठीक है। तो अब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ससुराली रिश्तेदार मदीना से, बनू नजार से मदद तलब की, तो वहां से 80 सवार आए थे, और उन्होंने जो है वो नौफल को जो है वो धमकी वगैरह लगाई, तो फिर कुआं वापस हुआ। इस बात को नौफल ने महसूस कर लिया, और नौफल ने क्या किया, फिर अब्द शम्स को अपने साथ मिला लिया और अब्दुल मुतलिब के खिलाफ एका कर लिया। यहां से ये फिर तकसीम हुई है कुएं के ऊपर कि दो भाई एक तरफ हो गए। दो तो वो पहले ही एक तरफ थे ना, क्योंकि अल मुतलिब ने तो अब्दुल मुतलिब को पाला था ना, ठीक है, तो वो तो वैसे ही वहां पर थे, तो ये कुएं पर यह तकसीम हुई है। दूसरा काम जो अब्दुल मुतलिब ने किया वो ये था कि जमजम का चश्मा जो है मुरूर जमाना के साथ दब गया था, तो बाद रवायतों में यह है कि अब्दुल मुतलिब को ख्वाब आया था कि फलां जगह पे जमजम है, तो ये खुदाई करते थे तो कुरैश मजाक उड़ाते थे, कब मिलेगा, ऐसी लगी हुई है, लेकिन इन्होंने खुदाई जारी रखी अपने बच्चों के साथ, हारिस वगैरह, और तो वो इत्तेफाक से जमजम का चश्मा निकल आया और बैतुल्ला का खजाना भी निकला। जब वो खजाना निकला है तो ये सारे कुरैशी, अब हमारा भी हिस्सा है, तो उन्होंने कहा खुदाई मैंने अकेले किए, तुम्हारा हिस्सा मैं कहां से दूं, ठीक है, उस वक्त मजाक उड़ाते थे। तो खैर बहरहाल फिर उन्होंने कुछ तकसीम कर दिया, कुछ बैतुल्ला की नजर कर दिया, लेकिन फिर वो जो जमजम था वो जमजम फिर इनके पास रहा। बैतुल्ला का खजाना मतलब यह कि कुछ सोने के आप कह लें जैसे हरन वगैरह कहा जाता है निकले थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो पुराने जमानों में वो क्या करते थे कि बैतुल्ला की नजर कर देते थे ना, कुछ सोना चांदी, तो वो बैतुल्ला में पड़ा रहता था। तो वो किसी वक्त में लड़ाइयों में क्या हुआ, वो किसी ने निकाल के तो जमजम के कुएं में उसको फेंक के वो कुआं भी जो है वो दबा दिया था, खत्म कर दिया था उसके आसार, लड़ाई लड़ाई में गुस्से में आके। वो जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे ना, उनके साथ भी ये लड़ते रहते थे ना, जो गैर मुल्की अनासिर आते थे। तो अब इन्होंने मन्नत ये मानी थी अब्दुल मुत्तलिब ने इसी मौका पे कि अगर जमजम का चश्मा निकल आया तो मैं अपना एक बेटा जो है वो ज़िबा कर दूंगा बैतुल्ला के नाम, और वो इत्तेफाक से रसूलुल्लाह सल्लम के वालिद थे अब्दुल्ला, जिनके नाम कुरा निकला। तो जब ये ज़िबा करने लगे हैं उनको, तो कुरैश आ गए, उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब बात यह है, आज तो तुम ज़िबा करने लगे हो अपना बेटा, ये रस्म चल पड़नी है, सब ने नजरें मान लेनी है, और कुरैश ने अगर इस तरह से अपने बेटे ज़िबा कर दिए तो हम दूसरों से जंग कैसे करेंगे, दूसरे तो हमारे ऊपर गालिब आ जाएंगे, हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, इसका सोचो। अब्दुल मुतलिब ने कहा मैं तो अब नज़र मान चुका हूँ, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर किसी से हम फैसला ले लेते हैं। तो खैर उन्होंने फैसला लिया, तो उसने कहा देखो बात यह है, तुम्हारी कौम में एक आदमी का जो खून बहा है वो कितना होता है? तो उन्होंने कहा भाई 10 ऊंट, उस वक्त 10 ऊंट था जो दियत होती थी, 10 ऊंट थी, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया ना तो उसका खून बहा अदा करना है, तो वो 10 ऊंट थी। उसने कहा ऐसा करो कि आप कुरा निकालते जाओ, एक तरफ अब्दुल्ला और दूसरी तरफ ऊँट, तो ऊँट बढ़ाते जाओ, जहाँ जाके जो है वो कुरा निकल आए तो वो उतनी ऊँट ज़िबा कर देना। तो उन्होंने इस तरह से कुरा डाला तो वो 10-10 ऊँट करते करते 100 पे जाके अब्दुल्ला का नाम निकल आया। तो 100 ऊँटों पे जाके फिर उन्होंने अब्दुल्ला की जान बख्शी हो, ठीक है। तो 100 ऊँट फिर उन्होंने क्या किए, कुर्बान किए अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला के इवज। वहां से दियत जो है रसूलुल्लाह सल्लम ने कहा कि 100 ऊँट पड़ गई, खून बहा वहां से 100 ऊँट पड़ा। जी देखे ना, वो तो जहरी बात है कि मन्नत ही पूरी कर रहे थे ना, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा किया, वो तो ये देख रहे थे ना, उनके पास कौन सा दीन था, उन्हें तो बस ये पता था कि इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को जो है वो अल्लाह के हुक्म पे ज़िबा कर दिया। तो बैतुल्लाह के लिए ज़िबा करना वो तो उसको नेकी समझ के कर रहे थे, मकसद तो कोई नहीं था, मकसद तो अल्लाह को राज़ी करना था। लेकिन फिर वो रुक गए। तो अब्दुल मुत्तलिब की अजवाज में से जो सफिया हैं उनके बेटे हारिस थे। हारिस जो है वो अपने वालिद की हयात में ही फोत हो गए, अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में फोत हो गए, मतलब मुसलमान नहीं। इनके चार बेटे हैं, नौफल, अब्दुल्ला, रबिया और मुगीरा, ये चारों मुसलमान हैं। नौफल फतह मक्का पे ईमान लेके आए। रबिया के बारे में भी आता है कि ये भी फतह मक्का पे ईमान लाए, बल्कि बाज़ जो है वो फतेह मक्का के मौका पे जो खुतबे हैं उनमें भी ये अल्फाज हैं कि रबिया का जो खून है इनके बेटे का, इनका छोटा बेटा जो है वो रबिया बिन हारिस, इनका छोटा बेटा जो है वो मक्तूल हुआ था। तो आपने दौरे जहिलियत के झगड़े ख़त्म करने के लिए कि मैं उनका खून और अपने चचा का सूद माफ़ करता हूँ, आइंदा से आप ऐसा ना करो, ठीक है। मुगीरा जो हैं ये भी फतेह मक्का के मौका पर ईमान लाए थे, आप सलम के रज़ाई भाई भी हैं मुगीरा जो हैं। खैर फिर इनकी औलादें भी आगे मुसलमान हैं, तो ये बनु हारिस के लाते हैं, ठीक है। आप सल्लम के चचा तो मुसलमान नहीं थे हारिस, लेकिन उनकी औलाद फिर आगे मुसलमान हुई। उसके बाद फिर दूसरी बीवी फातिमा है, फातिमा से फिर जो है वो अब्दुल्ला है। जी नहीं, हाँ उनकी औलाद में से अब्दुल्ला। तो फातिमा जो है उनसे अब्दुल्ला है, यानी आप सल्लम के वालिद, फिर अबू तालिब है आप सल्लम के चचा, फिर जुबैर हैं, ठीक है। तो अब्दुल्ला जो हैं इनकी उम्र 25 साल थी तकरीबन, तो ये भी मुल्क शाम में तिजारत की गर्ज से जा रहे थे। अब्दुल्ला जो है ये भी शाम में तिजारत की गर्ज से जा रहे थे, तो इनकी भी शादी वहाँ बनू नजार में हुई थी, मदीना में, हजरत आमिना से। तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने ननिहाल में वफात पाई। तो आप सल्लम की उम्र उस वक़्त कितनी होगी, बाद लोगों ने कहा कि 7 माह, बाद लोगों ने कहा कि 2 माह, यानी अभी आप अपनी वालिदा के पेट में थे कि आपके वालिद की वफात हो गई, और वो भी तिजारती सफ़र में हुई। दूसरे जो है वो अबू तालिब हैं। अबू तालिब फिर मतलब उनकी औलाद में से अकील हैं, ठीक है। हजरत अकील ये भी ईमान ले आए थे, बाद में ईमान लाए थे, ये बदर में कैद हुए थे, कैद होके आए थे, फिदिया दे के फिर जो है वो आज़ाद हुए। सुलह हुदैबिया के मौका पे ईमान लाए थे ये, या उससे कुछ पहले। अकील के बेटे थे मुस्लिम, मुस्लिम बिन अकील जिनका नाम आता है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के, जो प्यामर बन के कूफा में गए थे। अबू तालिब के दूसरे बेटे थे जाफर, जाफर तैयार जिनका नाम था, इनका भी नाम आपने काफ़ी पढ़ा होगा, یہ شروع میں ایمان لے آئے تھے, بلکہ یہی تھے نا جنہوں نے نجاشی کے دربار میں جا کے تقریر کی تھی, ارے جعفر تیار, یہ بھی ابو طالب کے بیٹے تھے. جی ہاں, حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی, ٹھیک ہے, جنگ موتا میں انہی کے پاس وہ جھنڈا تھا نا, اور یہ شہید ہو گئے تھے, بلکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنت میں اللہ نے ان کو دو بازو دیے. پھر تیسرے بیٹے حضرت علی, وہ تو معروف صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, خلفائے راشدین میں سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور فاطمہ ان کی طرف ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ میرا اور علی کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہے. تو کافی فضائل ان کے. جی نہیں, ابھی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھر اولاد کافی ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کافی شادیاں کی, ان میں ایک تو حضرت فاطمہ سے حضرت حسن اور حسین تھے, اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. پھر ایک بیوی تھی ان کی حولہ, جن سے محمد بن حنفیہ تھے, کیونکہ یہ حنفیہ قبیلے سے تھی نا. محمد بن حنفیہ کی اولاد میں پھر جو ہے آگے یہ اعوان پیدا ہوئی ہے. ہمارے یہاں یہ جو اعوان ہے نا قبیلہ, یہ حضرت علی کی جو بیوی تھی حولہ جو بنو حنفیہ سے تھی, ان میں سے محمد بن حنفیہ. پھر حضرت علی کی ایک بیوی تھی اسماء, حضرت اسماء, یہ حضرت اسماء جو ہیں یہ پہلے حضرت جعفر کی بیوی تھی, پھر ان کی شہادت ہو گئی, یہ جو حضرت جعفر تھے. پھر حضرت ابو بکر سے ان کی شادی اللہ کے رسول نے کروا دی, تو حضرت ابو بکر بھی چلے گئے, تو پھر حضرت علی کی شادی ہوئی ان سے. تو محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں, یہ ان کو پالا پوسا حضرت علی نے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو والدہ تھیں حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں, تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگوں میں یہ محمد بن ابی بکر حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر ایک بیوی امامہ تھی, امامہ بنت زینب, جن کا تذکرہ آیا. حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں نا محمد ابی بکر, یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں نا. کیونکہ حضرت اسماء جو ہیں, اسماء بنت امیس, ان کی پہلی شادی ہوئی جعفر سے, دوسری شادی ہوئی حضرت ابو بکر سے, ان سے محمد پیدا ہوئی ہے. پھر ابھی وہ چھوٹے ہی تھے کہ حضرت ابو بکر چلے گئے دنیا سے. نہیں, اہل تشیع نے نا شجروں میں کافی گڑبڑ کی ہے, یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, شجروں میں انہوں نے بہت گڑبڑ کی ہے, یہ تو بنیادی مصادر ہیں, وہ بغیر دلیل کے ادھر ادھر کی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں. لیکن ہر جگہ نہیں, انہوں نے بھی نہیں کی, ہر جگہ انہوں نے بھی نہیں کی, اکثر چیزیں ایگریڈ اپان ہیں, اہل تشیع اور اہل سنت کے اکثر چیزیں ایگریڈ اپان. ام ہانی, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی, ام ہانی مطلب ابو طالب کی بیٹی تھی. ان کا تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے, فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں کیا کیا تھا, قیام کیا تھا, اور وہاں ہی چاشت کی نماز بھی پڑھی, ٹھیک ہے, جو معروف ہوا ہے چاشت کی جو رکعتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن ہے. تو بنو مخزوم جو ہے نا, ان کے ایک سردار تھے حبیرہ بن ابی واہب, ان سے ان کی شادی ہوئی تھی ام ہانی کی, چار بچے تھے ان کے. تو فتح مکہ کے موقع پہ ام ہانی تو ایمان لے آئیں, فتح مکہ پہ جیسے بہت سے لوگ ایمان لے آئے, بنو ہاشم میں بھی کچھ لوگ جو ہے فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں, میجورٹی تو پہلے ایمان لے آئی تھی لیکن کچھ لوگ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں, جیسے کہ بنو امیہ میں سے کچھ لوگ پہلے ایمان لے آئے تھے لیکن میجورٹی فتح مکہ پہ ایمان لائی, تو یہ تقسیم رہی ہے. تو ام ہانی جو ہے نا, اللہ کے رسول نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. آپ وسلم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد ہے. پھر اس پہ اللہ کے رسول نے ایک تبصرہ کیا تھا قریش کی عورتوں کے بارے میں, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاطبہ ام ہانی بنت ابی طالب, کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کو نکاح کا پیغام بھجوایا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے بہت سے بچے ہیں. اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبصرہ کیا نا وہ یہ ہے کہ اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے بہترین اور اس کی کم سنی میں بچے پہ بھی سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے قریش کی عورتوں کی. ایک تو یہ ہے کہ رکبن الابل, یعنی بہترین عورتیں جو ہیں وہ قریش کی عورتیں ہیں, اونٹوں پہ سواری کرتی ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں, اونٹ جیسا جانور جو ہے اس پہ وہ سواری کرتی ہیں, اس کو ڈرائیو کرتی ہیں, مطلب بہادر خواتین ہیں, ٹھیک ہے, شجاعت تھی ان میں, بہادری تھی. اور دوسرا کہا کہ اولاد کے ساتھ جو ہے نا, اولاد کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے والی, یعنی دوسرا شوہر نہیں کریں گی, کس کے لیے؟ اولاد کی خاطر, کہ وہ کہیں نظر انداز نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپریشیٹ کیا. نہیں نہیں وہ ہے, اولادیں بہت ہیں, ہم ایسے ہی کھو جائیں گے نا شجروں میں, زیادہ نہیں, ابھی یہی مکمل ہو جائے تو بڑی بات ہے. کل سے ہم نے جو ہے, کل سے کیوں نہیں, ہم نے ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, کل سے ہم نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے ہم بیست شروع کر دیں, ورنہ ہم یہاں پہ ہی رہ جائیں گے نا. ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, ہم زیادہ نہیں اس میں گہرائی میں نہیں جا سکتے, اس لیے میں کچھ سوالات اس لیے اوائڈ کر رہا ہوں کہ ہم خواہ مخواہ زیادہ چیزوں میں نہ جائیں, ٹھیک ہے. ایک مہینہ. حضرت زبیر جو ہے ان کی وفات جو ہے وہ چوبیس برس میں ہو گئی تھی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 برس تھی, تو ظاہری بات ہے نبوت سے پہلے ہی ہو گئی حضرت زبیر کی وفات. تو یہ جنگ فجار میں شریک رہے تھے. ان کی اولاد میں سے عبداللہ, سبعہ اور ام حکیم, یہ جو ہیں وہ صحابی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, ام حکیم بیضا کے نام سے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے. حضرت عاتقہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں, ان کی بھی اسلام لانے میں اختلاف ہے, زیادہ روایات یہی ہیں کہ اسلام نہیں لائی تھی. حضرت اروا ان کے بھی اسلام لانے میں اختلاف ہے, ان کے بیٹے طلیب تھے وہ اسلام لے آئے تھے, وہ بدری صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پھوپھی ہیں امیمہ, امیمہ کے بھی اسلام لانے میں اختلاف ہے, لیکن ان کی بیٹی تھی زینب. ارے زینب سے آپ کا نکاح ہوا تھا نا, یہ آپ کی پھوپھی ذات تھی نا, ٹھیک ہے. ارے زید کے بعد, زید بن حارثہ سے جب طلاق ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا. یہ امیمہ کی بیٹی تھی. اور برہ, برہ کے بھی اسلام میں اختلاف ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں, 5 کے اسلام میں اختلاف ہے. حضرت صفیہ کے اسلام کے بارے میں اتفاق ہے کہ وہ اسلام لائی تھی, وہ تو روایتیں ملتی ہیں نا خاص طور پہ خندق کے حوالے سے, باقی 5 میں اختلاف ہے. ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 پھوپھی ایمان لائی تھی, باقی نہیں ایمان لائی تھی. اور چچاؤں میں بھی جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے, کتنے ہیں میرے خیال میں, حضرت عباس ہیں اور حضرت حمزہ ہیں, 2 ہی ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے چچاؤں میں کہ جو ایمان لائے تھے. باقی تو دیکھیں حضرت عبداللہ بھی نہیں, اور پھر حضرت حارث بھی نہیں تھے, ابو طالب بھی نہیں تھے, حضرت زبیر بھی نہیں تھے, یعنی بڑی تعداد تو نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئی نا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت لبنہ سے ابو لہب, یہ بھی ایمان نہیں لایا, ابو لہب بھی ایمان نہیں لایا. ابو لہب کی اولاد میں سے یہ 5 ایمان لے آئے تھے, عتبہ, موطب, درہ, عزہ اور خالدہ. عتیبہ ایمان نہیں لایا تھا. عتبہ جو ہے نا, عتبہ, اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس کے عقد میں حضرت رقیہ تھی, ٹھیک ہے, اس نے طلاق دے دی تھی حضرت رقیہ کو, بعد میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئیں, لیکن یہ ایمان لے آیا تھا بعد میں. عتبہ جو ہے فتح مکہ کے موقع پہ, یہ 5 فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے, ابو لہب کی اولاد میں سے عتبہ بھی, موطب بھی, درہ, عزہ اور خالدہ. عتیبہ جو ہے نا یہ فوت ہو گیا تھا ایک تجارتی سفر میں. اس کے عقد میں جو ہے وہ حضرت ام کلثوم تھی. تو جب یہ اپنے باپ کے ساتھ ابو لہب کے ساتھ شام کے سفر پہ جانے لگا نا, تو اس میں خباثت ذرا زیادہ تھی باپ کی طرح. تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھوک کے آؤں گا. تو یہ گیا اور آپ سلم کے سامنے اس نے تھوکا, تو آپ سلم نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا, اتنی نفرت دکھانے کی کیا. پھر آپ سلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو ہے نا وہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کرے. تو یہ سفر شام میں پھر جو ہے وہ ایک شیر وہ اس کو چیر پھاڑ کے کھا گیا تھا. جی اتیبہ. تو باقی پانچ ایمان لے آئے تھے. اور ابو لہب کی تو جو مخالفت ہے وہ تو معروف ہے نا, وہ ہمارے سامنے. اس کی بھی اور اس کی بیوی ام جمیل, ام جمیل بھی ابو سفیان کی بہن تھی. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حالہ جو ہے ان سے حمزہ تھے, حضرت حمزہ معروف صحابی ہیں آپ سلم کے چچا, یہ ایمان لے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور آپ سلم کے رضائی بھائی بھی ہیں, کیونکہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی سوائبہ, یہ صوبیہ نہیں سوائبہ ہے, تو سوائبہ جو ہے نا اس نے دودھ پلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کو بھی, حضرت حمزہ کو بھی. تو شکار میں بڑی دلچسپی تھی ان کی, تو یہ بھی اچانک ایمان لائے تھے. اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ کسی نے خبر دی تھی ان کو کہ ابو جہل جو ہے وہ تمہارے بھتیجے کو کوس رہا ہے, برا بلا کہہ رہا ہے اور تکلیف پہنچا رہا ہے. تو یہ اکثر شکار پہ رہتے تھے. تو ایک مرتبہ جب خبر ملی ہے تو وہ پھر وہیں آئے ہیں اور اس کے بیت اللہ میں دیکھا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے سر پہ کمان دے ماری, اس کا سر پھاڑ دیا. پھر اسی موقع پہ پھر اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آپ سے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے کہ آپ ایمان لے آئیں. تو وہ پھر ایمان لے آئے, اوائل اسلام میں ایمان لے آئے تھے حضرت حمزہ. پھر جنگ احد میں شہید ہوئے. ان کی شہادت کا قصہ جو ہے وہ معروف ہے. تو کہا جاتا ہے کہ جبیر بن مطم جو تھے نا, انہوں نے اپنے چچا توائمہ, توائمہ کا تذکرہ اوپر گزرا ہے, ان کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا جبیر بن مطم نے حبشی کو تیار کیا تھا, وہ جو واشی تھا, واشی کو تیار کیا تھا. پھر بعد میں ہندہ وغیرہ نے کلیجہ وغیرہ نکال کے چبایا یا اعضاء وغیرہ کاٹے, مسلح کیا ابو سفیان کی بیوی نے, وہ بھی خیر معروف واقعہ ہے. تو آپ سلم کو اس سے کافی رنج ہوا تھا. خیر بات. نیکسٹ کیا ہے, حضرت صفیہ, یہ بھی ایمان لے آئی تھی. حضرت صفیہ کے بیٹے تھے زبیر, ان کے بیٹے تھے عبداللہ, وہ عبداللہ بن زبیر, اور حضرت صفیہ کے بیٹے تھے زبیر, یہ اب آپ سلم کے ہو گئے پھوپھی زاد. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. آپ کے جو چچا ہیں زبیر وہ ایمان نہیں لائے تھے, یہ پھوپھی زاد جو ہیں یہ ایمان لائے. زبیر بن عوام, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حواری ہیں میرے, اور عشرہ مبشرہ میں سے. تیسرے مقوم, مقوم کے بارے میں آتا ہے کہ بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے کچھ 6 سال پہلے. بعد نے ان کا نام عبد القعبہ بھی بتایا. حجل, حجل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بعثت سے 5 برس پہلے وفات ہو گئی تھی. تو اکثر جو ہے وہ آپ کے چچا بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. جنہوں نے بعثت کا زمانہ پایا وہ آپ سمجھ لیں کہ 4 ہیں, تقریباً 4 ہیں. ان میں سے 2 ایمان لے آئے, حضرت حمزہ اور حضرت عباس, اور 2 ایمان نہیں لائے تھے, ابو لہب اور ابو طالب. غزوہ حنین
کے موقع پہ جنہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی اپنی سواری کو, آپ کہتے ہیں کہ
حارث تو پہلے فوت ہو گئے نا. نیکسٹ کیا ہے, نتیلا. نتیلا جو ہیں ان سے پھر حضرت عباس ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً 2 سال بڑے تھے, یعنی آپ کے چچا تو تھے لیکن عمر میں زیادہ آپ سے بڑے نہیں تھے, 2 سال بڑے تھے. حاجیوں کو پانی پلانے کا عہدہ انہی کے پاس تھا. یہ ایمان تو فتح مکہ کے موقع پہ لائے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ حمایت ان کی شروع سے رہی ہے. ابو طالب کی طرح ان کی حمایت شروع سے آپ سلم کے ساتھ رہی. ویسے ایک سوچ آتی ہے, ایک سوچ نا, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا, کہ حمایت کرنے والے فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے آئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ سے پہلے ہی چلے گئے. اگر وہ فتح مکہ پہ ہوتے تو ایمان لے آتے, یہ بات ذہن میں آتی ہے. तो अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे। लेकिन बहरहाल उसमें कुछ लोगों ने तो मुबालगा भी किया है, जैसे आप सल्लम की वालिदा के बारे में भी मुबालगा किया है, उसका भी आगे तस्करा आएगा। आपके चचा के बारे में भी मुबालगा किया है कि ईमान ले आए थे, ये बात ठीक नहीं है। बाकी ये बात बाज़ अहले इल्म ने कही है कि अल्लाह ताला आखिरत में उनका इम्तिहान लेगा, तो जो बेसत से पहले फोत हो गए, जैसे आपके वालदैन, आपके अबा व अजदाद, और अगर वो इम्तिहान में कामयाब हो गए तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। ये राय बेहतर मालूम होती है। हाँ, जिन्होंने बेसत का ज़माना पा लिया तो उनमें भी देखें, जिन्होंने हिमायत किया उनके बारे में कम अज़ कम ये बात आ गई कि उनके अजाब में तख़फ़ीफ़ है। जैसे हज़रत अबू तालिब के बारे में आता है कि जहन्नुम की आग सिर्फ उनके टखनों तक छुएगी, बाकी वजूद को नहीं, सिर्फ टखनों तक, लेकिन वो भी बड़ी बात है। तो वो जो हिमायत आप सल्लम की है, कुफ्र की हालत में भी की है, उस पर भी अजर है। वो अजर अजाब में तख़फ़ीफ़ की सूरत में है। हाँ, सबसे कम अजाब यही है। अब वो बात फिर वहाँ जाके शायद जो इब्न तैमिया वगैरह करते हैं ना, वो फिर एक अलहदा लेक्चर है, वो मैंने दिया है। फतेह मक्का
के
हाँ, वही फतेह मक्का का मौका ही है। फतेह मक्का तो बैत उकबा सानिया के मौका पे जो है ये आए थे हजरत अब्बास, और इन्होंने अंसार से कहा था कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके तो जा रहे हो, अगर हिमायत कर सकते हो तो फिर लेके जाओ, ऐसे नहीं। तो उन्होंने कहा हम करेंगे। ठीक, फिर हजरत अब्बास जो हैं वो बदर में कैदी भी बने, तो आप सल्लम ने कहा कि फ़िदिया दें, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के सल्लम ने कहा कि बड़ा माल है जो आप अपनी बीवी के पास छोड़ के आए उम्मे फजल के पास। तो आप सल्लम ने वो सारा माल याद करवाया, तो कहने लगे अल्लाह के सल्लम ये तो मुझे पता है या मेरे खुदा को। ठीक है, तो फिर हज़रत अब्बास ने जो है वो अपना भी फ़िदिया दिया, और फिर हज़रत अकील का भी दिया, और नौफल बिन हारिस, हारिस के बेटे नौफल जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उनका भी फ़िदिया दिया। खैर बहरहाल फ़तेह मक्का पर ईमान ले आए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनका बड़ा मुकाम और मर्तबा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो है जब कहत साली होती थी तो हज़रत अब्बास को क्या करते थे, वसीला बनाते थे, और इनके वसीले से दुआ करते थे कि नबी करीम सलम के ज़माने में तो हम उनको वसीला बना के दुआ करते थे, अब आप सलम जब चले गए तो ये अल्लाह के रसूल के चचा हैं, तो या अल्लाह हम इनको वसीला बना के आपसे दुआ करते हैं, और बारिश हो जाती थी। कुसुम जो हैं ये आपकी विलादत से पहले ही फोत हो गए थे, कहा जाता है कि जी 3 साल पहले। ज़रार भी बेसत से पहले ही फोत हो गए थे, इनकी शादी भी नहीं हुई थी, कोई औलाद भी नहीं थी। फिर जो आखिरी बीवी हैं मुमनिया, उनसे गैदाक हैं। गैदाक जो है अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटे थे, ये भी जो है वो मतलब आप सल्लम की उम्र कोई 13 वर्ष होगी तो उस वक़्त ये फोत हो गए थे। तो मतलब अक्सर आपके जो चचा थे वो आपकी बेसत से पहले ही फोत हो गए थे। तकरीबन 4 चचाओं को जो है वो बेसत का ज़माना मिला, और उनमें से 2 ईमान ले आए, 2 ईमान नहीं लाए। ठीक है, फूफियों में से 6 को ही ज़माना मिला बेसत का, लेकिन राजे को यही मालूम होता है कि 1 फूफी ईमान ले के आई, बाकी 5 के बारे में इख्तलाफ है, मुख्तलिफ आराएँ, मुख्तलिफ अकवाल हैं, जिसकी जो तहकीक है उसने पेश की, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन उनकी औलादें फिर आगे मुसलमान। ठीक है जी, तो कल हमने इंशाल्लाह से शुरू करना है फिर बेसत से। अभी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और ये सारे आप सल्लम के चचा और आप सल्लम के वालदैन, अब हम जो है वो नहीं बेसत नहीं कहना चाहिए, पैदाइश से, रसूल सल्लम की पैदाइश से कल हमने आगाज़ करना है। तो अभी हमारे 3 बड़े टॉपिक रह गए ना, एक पैदाइश से नबुव्वत तक, हम कल कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर लें, अगर आप लोग सवाल कम करें तो हैं, तो पैदाइश से नबुव्वत तक का ये हम कवर कर लें। फिर उसके बाद फिर हमारे 2 बड़े टॉपिक रह जाएंगे, एक मक्की दौर नबुव्वत का जो 13 साल का दौर है, और फिर उसके बाद एक टॉपिक है मदनी दौर का जो 10 साल का दौर है। उसको हम देखते हैं, फिर हम वो थोड़ा तफसील में चला जाएगा, उसको फिर हम देखेंगे कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अब कोई सवाल हो तो कर लें।